ओम शांति, ओम शांति। सभी साथ में बोलेंगे ओम शांति। दो तीन दिन से हम जो इस ज्ञान सरोवर परिसर में कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिसाब से आए हैं, लाभ ले रहे हैं, आज इस कॉन्फ्रेंस का हम समापन सत्र शुरू कर रहे हैं। आज के इस सत्र के हमारे अतिथि विशेष स्पीकर्स सभी इस सभा में अभी उपस्थित हो रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आज के विशेष आशीर्वचन देने के लिए हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं इस कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के अध्यक्ष आदरणीय राजयोगिनी सरला दीदी जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुनंदा दीदी जी, आज के वक्ता ब्रह्मा कुमार राजयोगी करण भाई जी, आज के विशेष अतिथि भ्राता जितेंद्र कुमार तोमर जी, और मुख्य वक्ता के रूप में हरियाणा पलवल से आ रहे हैं ब्रह्मा कुमार राजेंद्र भाई और हमारे शशिकांत भाई जी। हम आप सभी को अनुरोध करते हैं कि आप मंच पर अपना आसन ग्रहण करेंगे। और सभी मिलकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु स्मृति के द्वारा करेंगे। आपने दो दिन से हरेक के मुख से, हाँ, आदरणीय हमारे इस विंग के उपाध्यक्ष आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार राजू भाई जी भी पधार रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। पहले तीन मिनट हम उस प्रभु को बहुत प्यार से दिल से याद करते हैं, उसका आह्वान करते हैं, चलते हैं साइलेंस में। आज के इस कार्यक्रम में जो कि संध्या की वेला में कहे कि सारे दिन का एंड की तरफ हम जा रहे हैं और साथ ही साथ इस कॉन्फ्रेंस के भी समापन समारोह के लिए हम एकत्रित हुए हैं। वैसे समापन शब्द हमारे लिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि समापन के बाद ही कुछ नए की शुरुआत होती है, तो ऐसे हमें नई दिशा की ओर ले जाने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन सभी का स्वागत करने के लिए मैं बहनों को अनुरोध करती हूँ बैच और पुष्प के द्वारा। जी सॉरी, आज के कार्यक्रम के अतिथि भ्राता शिशुपाल पटले जी आप भी सभा में उपस्थित हैं, आप भी मंच पर उपस्थित हो जाए। हम जोरदार तालियां भी बजाते रहेंगे। और इसमें एक आप सभी को विनम्र विनंती है, जो हॉल में पीछे पीछे बैठे हैं थोड़ा आगे आकर के बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको भी स्टेज के समीपता का अनुभव होगा और अपनापन भी लगेगा। हम देखते भी रहेंगे और तालियां बजाते भी रहेंगे क्योंकि हमारा एक्यूप्रेशर भी होता रहेगा, हमारा उमंग भी बढ़ा रहेगा, बना रहेगा। सभी के स्वागत के साथ साथ आप सभी का भी यूं कहे इस भगवान के दरबार में आपका अपनों के द्वारा बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सबको देख करके अंदर से ये संकल्प आ रहा है कि आप सभी मोस्ट लकी स्टार्स हैं, जिन सभी का भगवान की डायरी में नाम दर्ज हो गया है। क्योंकि आप सबने सुना है कि यहाँ वही पहुंच गए हैं जिन्हों को भगवान की तरफ से स्पेशल निमंत्रण मिला हुआ है। तो आप अभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियों से अपने आप को उत्साहित करें और ये भी संकल्प लें कि हम शायद पहले बारी इस प्रोग्राम में आए होंगे, लेकिन हर साल आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं हमारे मंचासीन आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार राजू भाई से। आप हरियाणा पलवल से हैं, इस कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के आप एक्टिव मेंबर हैं, सेवाओं में हर प्रोग्राम में बहुत ही प्रॉम्प्टली आप उपस्थित ही नहीं लेकिन अपनी सहभागिता देते हैं। किसानों के आत्मनिर्भर किसान के रूप में जो भी प्रोग्राम्स अलग अलग स्थानों पर चलते हैं आप उसमें भी अपना सेवा दान देते आए हैं। ऐसे हमारे आदरणीय राजू भाई जी जो कि पिछले 45 सालों से इस राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, आपके अनेक अनुभव है, आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हैं आदरणीय राजू भाई जी।
ओम शांति। पिछले 3 दिनों से शायद इस बात को तो आप भली भांति समझ ही गए होंगे कि भारत ईश्वर की कर्म भूमि है और इस कर्म भूमि पर भी खास माउंट आबू, और माउंट आबू में भी जहां आज आप बैठे हैं ज्ञान सरोवर, और इस ज्ञान सरोवर के इस आध्यात्मिक मंच पर उपस्थित हमारे वक्तागण और सभा में उपस्थित कृषि वैज्ञानिक, कृषि अधिकारी, इस ईश्वरीय संस्थान में समर्पित हुई मेरी बहनें व भाइयों, मातृशक्ति माताओं, मैं सबको नमन करते हुए अपने कुछ शब्द आपके समक्ष रखता हूं। जब भारत भूमि की शुरुआत हुई, शायद आपने आज तक गीतों के माध्यम से सुना हो, डाल डाल पर करती सी चिड़िया सोने की रैन बसेरा, वो भारत देश है मेरा। और इस भारत देश के लिए ही एक गायन और भी चला है, इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। परंतु आज वो समय चला गया और उस समय को हम आज फिर से एक स्वप्न मात्र देख पा रहे हैं। शायद आज की पीढ़ी ने तो वो समय देखा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। आप यहां पिछले 3 दिनों से एक बहुत सुंदर चीज सुन रहे हैं, आत्मनिर्भर। क्योंकि व्यक्ति आज इस दुनिया के अंदर अपनी पहचान एक दैहिक पहचान से जाना जाता है, एक जो चंद लम्हों के लिए उसको डिग्री मिलती है उससे पहचाना जाता है। लेकिन ये भारत आत्मनिर्भर था और आत्मनिर्भर बनेगा और आत्मनिर्भर है। केवल आप श्रीमद् भागवत गीता के अंदर बार बार ये सुनते होंगे, हे अर्जुन, ये तुम जो देख रहे हो ये अंत होने को है और ये जड़ है, जो इन नेत्रों से देख रहे हो सब जड़ हैं। लेकिन तुम अपने दिव्य नेत्र को खोलिए और इससे देखिए, सभी आत्माएं हैं। सभी कौन है? आत्माएं हैं। और जब ये आत्म अभिमान की स्थिति हमारी बन जाती है, तो शायद आपने देखा हो महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन के पास रथ था और उसके सारथी जो थे वो कन्हैया जी थे, कृष्ण जी थे, और रथ जो था वो 5 अश्व का था। वो 5 अश्व कौन से हैं? कभी बैठकर सोचा है? और कभी भी आपने देखा हो श्री कन्हैया जी के पास जितने भी, चाहे चक्र ले लीजिए, चाहे उनके ज्ञान की जो वेला थी वो शब्द ले लीजिए, उन्होंने स्वयं कहा ये मेरे नहीं है। वो 5 अश्व थे हमारे, ये 5 प्रकृति के तत्व जिस पर कन्हैया जी हमेशा सवार रहते थे, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। पूर्ण कंट्रोल था श्री कृष्ण जी का। और उस समय पर जिस समय कृष्ण जी जो विचार करते थे वो अश्व समय पर काम करते थे, तब वो भारत आत्मनिर्भर था। उस भारत को आत्मनिर्भर कह सकते हैं। आज हमारे विपरीत कर्मों के कारण, विपरीत दिशा में चलने के कारण ये 5ों तत्व भी हमारे विपरीत हो चुके हैं। समय पर हमारे को वायु नहीं मिलती, समय पर हमें पानी नहीं मिलता। पानी के बारे में आपने कल बहुत सुंदर सीरियल देखा, पानी की क्या हालत हो गई है। जिस भारत देश के अंदर दूध और दही की नदियां बहती थी, आज वहां पानी कितने रुपए लीटर हो गया है? 150 रुपए लीटर तक भी पानी मार्केट में मैंने देखा है। वो तत्व उस समय कन्हैया जी के ऑर्डर में था। कन्हैया जी माने कृष्ण, कृष्ण की वंशावली है हमारे इस देश के किसान, और हर देश का, भारत देश का रहवासी। उस समय प्रकृति के 5ों तत्व हर मानव के इशारों से चलते थे, क्योंकि मानव देवता था। जैसे जैसे हम अपने गुणों से दूर होते चले गए, हम आत्मा का ज्ञान, आत्म अभिमान की स्थिति को छोड़ और अपने अंदर एक शब्द प्रवेश कर लिया, मैं, मेरे से बलवान बड़ा कोई नहीं, मेरे से सीटवान बड़ा कोई नहीं है, पदवान कोई बड़ा नहीं है, मेरे से धनवान कोई बड़ा नहीं है, तब से ये प्रकृति हमारी राजा हो गई और हम इसके दास हो गए। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से 3 दिन के अंदर आप ये पूर्ण रीति से ज्ञान में समझ पाए होंगे, जैसे जैसे हम आत्म अभिमानी बनते चले जाएंगे, प्रकृति हमारे इशारों से चलेगी और प्रकृति भी हमारे देवता बन जाएगी। और देवता तो है, लेकिन हमारे वायुमंडल खराब होने से, हमारे वाइब्रेशंस खराब होने से। आज पर्यावरण की बात हम करते हैं, लेकिन सबसे पहले पर्यावरण बिगड़ा है हमारे विचारों से। और भारत को अगर सशक्त बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो अपने विचारों को परिवर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, जैसे विचार होते हैं वैसा ही व्यक्ति दिखना शुरू हो जाता है। और जैसी दृष्टि होती है वैसा उसका कर्म फिलोसफी बन जाती है। तो इसीलिए इस आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए, सशक्त भारत के लिए, सबसे पहले हमें अपने सकारात्मक विचारों को अपने कर्मों में लाना ही पड़ेगा। जैसे जैसे हमारे विचार परिवर्तन होंगे, सकारात्मक होते चले जाएंगे, हम अपनी पुरानी स्थिति, जिसके लिए कहते हैं स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, खुद अपनी इंद्रियों पर राज करना शुरू कर देंगे, अपने नेत्रों पर, अपने मुख पर, अपने कानों पर, क्योंकि आज एक व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता के कारण एक बहुत अच्छी आदत बन गई है, इसको मैं बुरी भी नहीं कहूंगा, अच्छी कहूंगा, क्योंकि किसी को बुरा ना लगे। कहीं भी नकारात्मक बात हो रही हो तो हम बड़ी रुचि से सुनते हैं, इस इंद्रियों का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके अंदर क्या भर रहे हैं सोचिए। सकारात्मक बात के लिए अगर हम आज किसी के पास जाते हैं तो वो बोलता टाइम नहीं है, आश्रम पर आने के लिए आधा घंटा नहीं है। अगर आपको 3 घंटे कोई सीरियल देखना हो तो कैसे भारत आत्मनिर्भर बनेगा? इस आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए, सशक्त भारत को बनाने के लिए, सबसे पहले आत्मा का कनेक्शन, जो आज आपको परमात्मा का ज्ञान मिला होगा, उससे जुड़ना होगा, और जो उससे ज्ञान मिलेगा तो हमारी आत्मा सशक्त बन जाएगी, आत्मा सशक्त होगी तो ये देश भी सशक्त हो जाएगा, ये पक्की बात है। और जब ये आत्मा सशक्त हो जाएगी, परमात्मा से कनेक्शन लग जाएगा, तो ये प्रकृति आपको कभी भी धोखा नहीं देगी, अर्थात ये शरीर कभी भी रोगी नहीं होगा, क्योंकि ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, ये भी एक प्रकृति है। इसके लिए सर्वप्रथम आत्मा के जो गुण हैं, आपने सुना होगा ना, प्रेम, शक्ति, आनंद, ज्ञान, सुख, ये हमें अपनाने पड़ेंगे, इनको जीवन में लाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम इन गुणों को जीवन में लाएंगे, देवता और आज के मनुष्यों में कोई 4 हाथ या 2 पैर का अंतर नहीं है, वो भी हमारी तरह ही है, लेकिन उनको देवता किस लिए कहा गया? क्योंकि वो गुणवान है, और गुणवान बनाने वाला परमात्मा है। उस परमात्मा के साथ जब हमारी कनेक्टिविटी जुड़ेगी, हर कर्म में हम कर्मयोगी बन जाएंगे, तो हम ही देवता कहलाएंगे, और ये भारत ही फिर स्वर्णिम भारत और सशक्त भारत हो जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि सर्व खजानों की चाबी संतुष्टता है, और आज व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अगर आपकी खेती में 25 मन गेहूं हो रहा है तो 50 चाहिए, गाय 5 किलो दूध दे रही है तो 10 किलो चाहिए, आपकी इनकम में 10,000 रुपए हैं तो 20,000 चाहिए। ये चाहिए चाहिए की भावना तभी खत्म होगी जब हम अपने को, जो 3 दिन में आपने ये सुना है, इसको वहां जाने के बाद भी जीवन में अप्लाई करेंगे, जीवन में लागू करेंगे। और अप्लाई करने के लिए क्या है, जब गाड़ी हमारी पुरानी हो जाती है ना, तो बार बार कहां जाना पड़ता है, वर्कशॉप में। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने भारत के अंदर 4,000 के लगभग वर्कशॉप खोली हुई है, बड़ी और छोटी तो 8,000 और मिला लीजिए 12,000 के लगभग वर्कशॉप, माना आश्रम खुले हुए हैं। वहां जाइए और इस मन के अंदर जो आज अशांति, दुख, तनाव, भय ऐसा वातावरण के कारण पैदा हो गया है, उसको निकालने की वर्कशॉप एक ही है, केवल एक ही है इस भारत देश में, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और उस वर्कशॉप में जाने से आपके अंदर वो नेचुरल खुशी, जो देवताओं का चेहरा सदा खुशनुमा होता था, वो दया भाव जो देवताओं के अंदर होती थी, वो करुणा भाव जो देवताओं में होता था, वो आपके अंदर नेचुरल आ जाएगा। अब जब नेचुरल जो चीज हमारे लाइफ में आ जाएगी, तो ये बेहद कुटुंबकम की भावनाएं, एकता की भावनाएं, एक कुल की भावनाएं, एक भाषा की भावनाएं इस भारत में होगी, इस भारत में होगी। और जब यूनिटी हो जाएगी तो ये प्रकृति भी आपकी दासी हो जाएगी। जहां संगठन होता है वहां बल होता है, और ये प्रकृति दासी हो जाएगी तो इसी धरती पर शेर और गाय घाट पर पानी पिएंगे, और ये भारत देश के हर व्यक्ति के घर पर सोने की चिड़िया रैन बसेरा किया करेगी, और ये भारत की धरती सोना उगलेगी और उगलेगी हीरे मोती, ऐसा मेरा विश्वास। अंत में मैं यही कहूंगा, समय को की घड़ियां आगे बढ़ती जा रही हैं, आप एक काम कर लीजिए। मैंने कई इस भारत देश के प्रांतों में जाकर कई व्यक्तियों से बात की, केवल एक ही शब्द मिलता, भाई साहब समय नहीं है। और आपको अगर नौकरी के लिए जाना हो तो सब कहेंगे हमें ऊंच पद चाहिए, क्या बनना है, मैनेजर बनना है। तो मेरे साथियों, अपने समय को मैनेज करना शुरू कर दीजिए तो आपके पास समय बहुत निकलेगा, और ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के लिए टाइम अपने आप हो जाएगा। समय को मैनेज करना सीख लीजिए। समय को मैनेज जिसने कर लिया वो खुदा का प्यारा है, और जिस जो खुदा का प्यारा है वो सारे देश का तारा है। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक समय को मैनेज करके ईश्वर के प्रति, पैतृक जो हमारा कर्ज है परमात्मा के प्रति, उसको उतारने का प्रयास कीजिए। माना अपने जीवन में उसके गुण लाइए और उसका संदेश इस देश में फैलाइए। और पॉजिटिव व्यक्ति जब जहां से निकलता है उसका ऑरा अपने आप चारों तरफ फैलता है, जिसके कारण से प्रकृति भी शुद्ध हो जाती है और उसके अड़ोस पड़ोस के रहने वाले भी व्यक्ति अपने आप परिवर्तन हो जाते हैं। तो अपने अंदर पॉजिटिव ऑरा प्राप्त करने के लिए आत्मबल बनना पड़ेगा, और आत्मबल बन जाएगा जिस दिन, उस दिन हम भारतीय आत्मनिर्भर हो ही जाएगा। जिसके लिए पुराने लोगों ने कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर के पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो बुलंद कीजिए अपने को। हम दूसरे की ओर उंगली उठाते हैं लेकिन तीन उंगलियां किधर है, मेरी तरफ, और ये अंगूठा किधर है, ऊपर है। माना ईश्वर कह रहा है पहले तीन कमजोरियां अपनी देखो, जब चौथी किसी और की देखना। तो अपने को परिवर्तन कीजिए, स्वयं परिवर्तन से ये विश्व परिवर्तन होगा। थैंक यू, धन्यवाद, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र भाई जी, आपने अपने वक्तव्य से यूं कहूं कि हमें आत्मदर्शन कराया है। जिस लाइफस्टाइल में हम जी रहे हैं उसको थोड़ा सा टर्न देकर, जो आध्यात्मिक जीवन प्रणाली है, जिस जीवन में शांति, प्रेम, खुशी, दूसरों के भले की सोच अगर हम जीवन में भर दें, तो निश्चित है कि हम आत्मनिर्भर खुद ही बनते जाएंगे। क्योंकि भगवान की यही सीख है कि जीवन को वैल्यू से भर दो तो आप खुद ही वैल्यूएबल बनते जाएंगे। धन्यवाद राजेंद्र भाई जी। अब इसके बाद आमंत्रित करती हूँ आदरणीय भ्राता जितेंद्र कुमार तोमर जी, आप लखनऊ उत्तर प्रदेश से पधारे हैं, एमडी सीड कॉरपोरेशन। बहुत अलग अलग जगहों पर आपने सेवा दी है, हम आपको विशेष आमंत्रित करते हैं अपना दो दिन की कॉन्फ्रेंस में जो भी कुछ ऑब्जर्व किया है, सोचा है, आगे के लिए अपना वक्तव्य रखेंगे भ्राता जितेंद्र कुमार तोमर जी।
धन्यवाद शोभा दीदी जी। आज के इस सर्वांगीण विकास का आधार शाश्वत यौगिक खेती की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय शरला दीदी जी, जिनके कुशल नेतृत्व में देश और विदेश में हमारे कृषि और ग्राम विकास के कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, उनका कुशल नेतृत्व इस कार्यक्रम को शिखर पर पहुंचाने में लगा हुआ है, ऐसी हमारी सरला दीदी जी, हमारे बहुत ही आदरणीय श्री राजू भाई जी, जो उपाध्यक्ष के पद पर कृषि और ग्राम विकास का कार्य देख रहे हैं, और उनके द्वारा इस कार्यक्रम को जो दिशा और दशा दी जा रही है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, और उनके कुशल निर्देशन में भी ये सारे कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। मंचासीन हमारे भ्राता भाई राजेंद्र जी, भाई श्री सुनंदा, भाई श्री करण जी और भाई श्री शशिकांत जी, सुनंदा बहन जी, और सभा कक्ष में उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, वैज्ञानिकगण, भाइयों और बहनों, ये 3 दिवस से कार्यक्रम चल रहा है, और हम लोग इस कार्यक्रम में जितने भी विषयों पर चर्चा हुई है उनको बहुत ध्यान से और पूरे मन से हम लोग उन कार्यक्रम को सुने। बहुत ही सार्थक चर्चा 3 दिनों में हुई है इन कार्यक्रम में। आज का जो विषय मुझे दिया गया है, सबसे पहले मैं भाई बद्री विशाल जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उनकी वजह से ही मैं आज आप लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हूँ, क्योंकि उनका इतना रुचि रहता है इन कार्यक्रमों में और उनके माध्यम से ही सारे कार्यक्रम प्रदेश में संचालित होते हैं, तो उनकी वजह से ही आपसे वार्ता करने का मौका मिला है। आज का जो विषय है वो स्वर्णिम सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का पुनर्निर्माण। मैं ऐसा सोचता हूं कि जो विषय है वो ऐसा है कि जो 3 दिवस में हम लोग यहां पर चर्चा हुई है, बहुत ही विद्वान वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य रखे हैं, ये उन सब वार्ता वक्तव्यों का ये निचोड़ है, ये एक तरह से, क्योंकि इसमें सारी चीज समाहित है। स्वर्णिम भारत अगर हम बनाना चाहते हैं तो स्वर्णिम भारत की भी इसमें चर्चा हुई है और हमारे बहुत ही विद्वान वक्ताओं ने चर्चा किया है। सशक्त भारत की भी चर्चा हुई है और आत्मनिर्भर भारत की भी, अभी भाई राजेंद्र जी ने काफी विस्तार से चर्चा किया है कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बना सकते हैं, और इन तीनों जो हमारे विषय हैं इन तीनों विषयों पर ही बहुत विस्तार से हम लोगों ने सुना और समझा। ये मैं सबसे पहले जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारा संस्थान है और जो हमारा कृषि और ग्रामीण प्रभाग है वो इन तीनों विषयों के आगे बढ़ाने के लिए, उनको सफल बनाने के लिए और भारत को उस दिशा में ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। ये हमारे लिए बेहद सौभाग्य की बात है। अब मैं अपने विषय पर आता हूं, चूंकि विषय बहुत शॉर्ट में मैंने बनाया है इसको। सबसे पहले मैं ये अवगत कराना चाहूंगा कि जो भारत है वो हमारे चक्रवर्ती सम्राट जो भरत थे उनके नाम पर ही इस देश का नाम पड़ा है, और इसी वजह से ये भारत देश जो है कहलाया है। ये बहुत विस्तार और विस्तृत देश था जिसको चक्रवर्ती सम्राट भरत ने पूरी तरह से यूनाइट रखा और एक मोती में पिरो के रखा इस देश को। ये ऐसा देश था जिसको हम लोग आर्यव्रत के नाम से भी जानते हैं और भारत के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद मैं ये जो हमारा अगला विषय है, स्वर्णिम और सशक्त भारत। स्वर्णिम और सशक्त भारत के बारे में मुझे ये कहना है, वैसे तो हमारे भाई विशाल बद्री विशाल जी ने चर्चा कर दी थी इसके बारे में, लेकिन सतयुग से लेकर के कलयुग की जो 17वीं शताब्दी थी वहां तक ये साहित्य में मिला है कि भारत स्वर्णिम था और भारत स्वर्णिम रहा है, ऐसी साहित्य में पूरी तरह से हमको देखने में मिलता है। देश में स्वर्णिम और सशक्त और आत्मनिर्भर भारत को जब हम लोग ये कह रहे हैं कि पुनर्निर्माण करना है, पुनः निर्माण करना है, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि पहले सशक्त भारत रहा है, स्वर्णिम भारत रहा है और आत्मनिर्भर भारत भी रहा है। बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसकी वजह से भारत में कुछ परेशानी पैदा हुई और जो बाहर के जो भी हमारे ऐसे आक्रमणकारी आए उनकी वजह से स्थिति बदली, लेकिन फिर से हम लोग उसी स्थिति में आने के लिए प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्णिम भारत को बनाने के लिए जो भी हमारे पूर्वजों ने कार्य किए, उन्होंने जो भी जितनी मेहनत किया, लगन से काम किया है, उसमें ये पूरी तरह से निश्चित हो चुका है कि विश्व की आधे से अधिक संपत्ति भारत के पास थी और यहां से निर्यात का बड़े पैमाने पर काम होता था, चाहे वो मसालों के रूप में हो, चाहे वो अन्य फसलें जो हमारी कृषि से संबंधित फसलें हैं उनके बारे में हो, बड़े पैमाने पर ये काम होता था और उसके बदले में वहां से सोना लेकर के आते थे। इसीलिए ये बार बार ये बात आती है कि भारत को इसी वजह से, चूंकि यहां की जो स्थिति थी, सोने की भंडार थे, खनिज के भंडार थे, इसीलिए इसको सोने की चिड़िया कहा गया। इसके बाद हम लोग समृद्ध भारत की अगर बात करें, समृद्ध भारत को जो था हमारा पूर्व में, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण हमारी बिंदु थे वो प्राकृतिक खेती थी। प्राकृतिक कृषि की वजह से समृद्ध भारत पूरी तरह से था, हर व्यक्ति को काम था, हर हाथ को काम था, जिसकी वजह से समृद्धि थी पूरी तरह से देश में। तो ये पूरी जो हमारी आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था थी उसके बारे में भी मैं कुछ यही कह सकता हूं कि ग्रामीण व्यवस्था में कुटीर उद्योगों की वजह से, चूंकि कुटीर उद्योग बहुत हुआ करते थे उस समय, उसकी वजह से ग्रामीण व्यवस्था हमारी पूरी तरह से मजबूत थी। जो हमारा विशिष्ट उत्पाद थे जो विदेशों में जाते थे वो बहुत लोकप्रिय थे और उनकी लोकप्रियता की वजह से हमारा निर्यात जो है वो बढ़ता गया और निर्यात काफी ज्यादा होने की वजह से हमें सोने के रूप में या अन्य किसी सामग्री के रूप में जो भी हमको मिलता था उससे देश में समृद्धि हुई और देश सशक्त हुआ। जो हमारी परस्पर और जो सहयोग शांतिपूर्ण समाज था उसका निश्चित रूप से अहम रोल होता है। जो हम यहाँ पर देख रहे हैं तीन दिन से कि जो प्रेम, जो भाईचारा जो यहाँ पे देखने को मिलता है वो निश्चित रूप से एक मिसाल है और उससे निश्चित रूप से देश जो है तरक्की की तरफ बढ़ेगा। लेकिन जो व्यवस्था थी, चाहे वो सशक्त हमारी अर्थव्यवस्था हो, चाहे बाकी हमारी चीजें हो, उनको जब भी 17वीं सदी के बाद में जब भी बाहर से आक्रमणकारी आए, उन्होंने उसको थोड़ा नुकसान पहुंचाया और उस नुकसान की वजह से देश को पीछे हटना पड़ा। 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था और अनाज न होने की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई कि देश को बाहर से ऐसी ऐसी किस्मों का मंगाना पड़ा जिससे देश में उत्पादन बढ़ाया गया। ऐसी किस्में आई जिसमें अधिक से अधिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया गया, ऐसी किस्में जिसमें रसायनों का प्रयोग किया गया, जिसके वजह से उत्पादन तो बढ़ा, हमारे देश में उत्पादन की कमी नहीं रही, लेकिन उसका परिणाम जो है वो ये हुआ कि हमारी जो मिट्टी थी, जो मृदा थी, उसको बहुत नुकसान पहुंचा और उसकी उर्वरा शक्ति घटती चली गई। इस वजह से ये हम लोगों को दिक्कत हुई और अब ये समय आ गया है कि सशक्तिकरण जो है हमारा, सशक्तिकरण का जो आधार होता है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत शक्तिहीन लोगों को अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं, ऐसी ये व्यवस्था है। इसके लिए हम लोग आर्थिक रूप से सशक्तिकरण का आधार बनाना होगा, सामाजिक रूप से बनाना होगा और मानसिक रूप से बनाना होगा। मेरा मानना यह है कि अगर समाज मानसिक रूप से सशक्त नहीं है तो आर्थिक और जो हमारा सामाजिक सशक्तिकरण है वो हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारा मानसिक सशक्तिकरण है उस पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तीन दिन से हम लोग इस बात पे बहुत ध्यान दे रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि जो हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है वो राजयोग के माध्यम से सशक्तिकरण, जो मानसिक सशक्तिकरण है, उस पर विशेष रूप से जोर दे रहा है। इसका मतलब यही है कि हम लोग इस पर जोर दें और इस वजह से हम लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो सकेंगे, इसमें निश्चित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी जो प्राकृतिक योगी कृषि है उसमें वेदों और जो हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने जो भी परीक्षित विधि सुझाई है वो निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती की तरफ इशारा करती है और राजयोग के माध्यम से अगर हम लोग सशक्तिकरण करेंगे तो निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती और राजयोग दोनों का समन्वय स्थापित करते हुए अगर दोनों का समन्वय स्थापित हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग इसमें पूर्ण रूप से सफल होंगे और हमारी जो मृदा है, हमारी जो उत्पादन है, वो हमको अच्छा उत्पादन, गुणवत्ता उत्पादन प्राप्त होगा, जिसकी वजह से जो हमारी दिक्कतें समाज में, परेशानियां पैदा हो रही हैं, उनसे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। तो ऐसी जो हमारी व्यवस्था है उसमें ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बहुत अहम योगदान है और विश्वविद्यालय इस तरफ पूरी अपनी लगन और पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। मैं यहाँ 3 दिन से सुन रहा हूँ कि जितने भी हमारे भाई और बहन इस कार्य में लगे हुए हैं वो बहुत मनोयोग के साथ में कार्य कर रहे हैं और पूरे देश के हर प्रांत में लगभग ये कार्य हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है कि हम लोग इसको और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और ये प्रयास करें कि राजयोग और प्राकृतिक खेती दोनों का समन्वय स्थापित करते हुए हम इसको आगे ले जाएं, जिससे देश को और समाज को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जो हमारी बाकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी प्राकृतिक खेती है, इसके बारे में मैं पहले से ही बता चुका हूं। मुझे ये कहने में कतई कोई संकोच नहीं है कि भारत जो है वो पहले हमारा लगभग 51-52% जीडीपी में योगदान करता था। जो योगदान है जीडीपी में वो निश्चित रूप से घट रहा है और लगातार घट रहा है। इसके मुख्य कारण आप लोग सभी जानते हैं कि उद्योगों का काफी ज्यादा विस्तार हो रहा है और खेती में जो हम लोग निर्यात की बात करते हैं वो निर्यात भी काफी घटा है, जिसकी वजह से जीडीपी में कमी आई है। इस कमी को पूरा करने के लिए दोबारा से पुनः हम लोगों को इस बारे में चिंतन करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। जो आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर भारत का आजकल पूरी हमारी, चाहे सरकार हो, चाहे हमारे सभी संस्थान हो, सभी लोग इस कार्य में लगे हुए हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएं। आत्मनिर्भर कैसे होंगे, इस बारे में आज 3 दिन से हम लोग लगातार चर्चा सुन रहे हैं कि आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे हम लोग। और महात्मा गांधी जी भी यही चाहते थे कि देश आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर रहे, जिससे जो भी आत्मनिर्भर रहेंगे वो निश्चित रूप से सफलता की तरफ बढ़ेंगे और देश उसी तरह से आगे बढ़ेगा। इसलिए हम लोगों को ये चिंतन करना है कि किस तरह से लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, देश के लोग किस तरह से आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इस बारे में जरूर हम लोगों को चिंतन करना पड़ेगा। और उसके लिए जो महत्वपूर्ण टूल है हमारा, हर हाथ को अगर काम मिलेगा तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता आएगी और उसका लाभ देश को जरूर मिलेगा। तो जो सशक्तिकरण के हमारे आधार हैं उसके बारे में मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, बस इतनी जरूर, चूंकि समय का अभाव है और समय को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग ज्यादा इस पे विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो जो यौगिक कृषि है, यौगिक कृषि के बारे में जो भारतीय संस्कृति है या भारतीय मूल्य हैं उनको निश्चित रूप से हमको अपनाना पड़ेगा, चाहे प्रेम हो, प्रेम की भाषा। ये यहां आकर के हम लोगों ने इस बात पे तो सबसे ज्यादा चिंतन किया कि जो प्रेम की भाषा, प्रेम की बोलचाल, आपस में प्रेम भाईचारा जो यहाँ पे देखने को मिलता है वो बाहर कहीं नहीं मिल पाता है। तो इसमें सब लोगों को विचार करते हुए इसको आगे बढ़ाना होगा। शांति जो एक शब्द है हमारा, उसके बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। शांति तो निश्चित रूप से होना ही चाहिए। शांत मन अगर होता है तो हर हालत में अच्छे कार्य होते हैं और कार्य करने में हम लोगों को सफलता भी मिलती है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि विचार, जब अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं इंसान के पास, तो विचार उत्पन्न होना जरूरी है। अगर हमको आगे बढ़ना है तो विचार उत्पन्न होंगे, अच्छे विचार हम लोग उत्पन्न होने की वजह से उसका संकल्प लेंगे, क्योंकि संकल्प के बिना सिद्धि संभव नहीं है। इसलिए अच्छे विचार आए हम लोगों के पास और अच्छे विचारों के बाद हम लोग संकल्प करें और संकल्प के माध्यम से हम लोग उसको धरातल पे उतारने का प्रयास करें, तभी ये सारी चीजें संभव होगी। इसलिए इस बारे में भी हम सब चिंतन करेंगे। प्राचीन हमारी जो प्राचीन परंपराएं थी इसको पुनर्जीवित करके प्राकृतिक योगी खेती अपनाने पे विशेष जोर हम लोग दे रहे हैं और संस्थान भी विशेष जोर दे रहा है। इसमें मुझे सबसे पहले यही कहना है कि हम लोग इस तरफ बढ़ें और जैसा 3 दिवस में यहाँ पर बताया गया है प्राकृतिक खेती और योगिक शाश्वत योगिक खेती, उसमें जो मैं समझता हूँ, जो मैं समझ पाया हूँ इस बारे में, वो यही समझ पाया हूँ कि अगर हम लोग प्राकृतिक खेती के साथ में राजयोग को समाहित कर दें तो वो ही शाश्वत खेती हमारी होगी। और चूंकि राजयोग जब उसमें समाहित हो जाएगा तो निश्चित रूप से योगी खेती करने में हम लोगों को अच्छा भी उत्पाद मिलेगा, अच्छी पैदावार भी होगी और जो उसके साथ प्रेम भाव और जो लगा हुआ है वो भी निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ाने में सहयोग करेगा। आप लोग सभी जानते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, ये हम लोगों की सबकी इच्छा भी होती है कि सब सुखी रहें, सब निरोग रहें। और सब सुखी और निरोग कब रहेंगे? जब हमारे पास मानसिक शांति होगी, अच्छा उत्पादन होगा, योगिक खेती के द्वारा हम लोग अच्छा पैदा कर पाएंगे, तभी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, तभी हमारे निरोग रह सकते हैं और तभी हम खुश और संपन्न हो सकते हैं, जब हम लोग इस बात पे विचार करेंगे। मृदा सुधार के बारे में, मृदा सुधार एक ऐसा विषय है जिसपे बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि मृदा को जब तक हम लोग सुधारेंगे नहीं तब तक हमको उत्पादन मिलने में कठिनाई होगी। और मृदा एक ऐसा आधार है, हमारा बेस है ऐसा, कि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना मृदा के हम लोग कोई भी उत्पादन लेने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसलिए मृदा के सुधार पर हम लोगों को सबसे ज्यादा चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, जिसमें जो हमारी शाश्वत योगी खेती है उसका अहम रोल होगा, अहम कार्य होगा। इसलिए मृदा को सुधारने के लिए योगी कृषि को हम लोग प्राथमिकता दें, उसे बढ़ाएं और इस पे विचार करें। इसके अलावा जो हमारी लागत है वो भी योगी खेती में काफी कम आती है। मैं ये कई बार अध्ययन किया है और भाई बद्री विशाल जी से भी हम लोगों ने कई बार चर्चा किया है इस संबंध में। ये देखा है, ये पाया है हमने कि इसमें काफी कम लागत आती है, काफी कम लागत आती है और उसकी वजह से किसान भाइयों को काफी लाभ मिलता है। इसलिए इसमें कोई संकोच नहीं है मुझे कुछ कहने के बारे में कि कम लागत होने से किसान भाइयों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जो टिकाऊ खेती है हमारी, ये टिकाऊ खेती शाश्वत खेती का ही एक रूप है, क्योंकि इसका उद्देश्य यही है कि लंबे समय तक हम लोग उत्पादन अपनी जमीनों से लेते रहें। क्योंकि अगर रसायन का इस्तेमाल कम नहीं किया और इसी तरह से हम लोग उसका प्रयोग करते रहे तो निश्चित रूप से जमीन खराब हो जाएंगी। कई हमारे साथी वक्ताओं ने इस बारे में पहले भी चर्चा किया है कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण हो रही है। तो इसलिए हम लोग जैविक उर्वरकों के बारे में विचार करें और जैविक खादों के बारे में विचार करें और जो पद्धति यहाँ पर बताई गई है उसके बारे में विचार करना चाहिए, तभी हम लोग अपने जो अच्छा समाज है, अच्छे विचार हम लोग इसमें डाल सकते हैं, ला सकते हैं। और इस पे मेरा सभी अपने जो भी किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं, बहनें बैठी हुई हैं या हमारे और अधिकारीगण और वैज्ञानिकगण बैठे हुए हैं, सभी से यह अनुरोध है कि समाज को आगे ले जाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए हम लोग सब उसमें योगदान करें। और जितना ज्यादा से ज्यादा योगदान करेंगे उतना ही हमारा देश निर्भर बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। और सरकार भी इसमें निश्चित रूप से प्रयास कर रही है, हमारा ईश्वरीय जो विश्वविद्यालय है वो भी बहुत प्रयास कर रहा है। मैं अंत में यहाँ आने के लिए, यहाँ पे जितना ज्ञान हमको 3 दिन में मिला है, मैं अपने कृषि और ग्राम विकास प्रभाग के समस्त जो हमारे अधिकारीगण हैं, वैज्ञानिकगण हैं और जो इसमें इस कार्य में जो भी लगे हुए हैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ और ये अनुरोध करता हूँ कि इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करें। हम लोग उत्तर प्रदेश में इस काम के लिए मुझे ये पिछले 2-3 साल से हम लोग इस बात पे चर्चा करते रहते हैं और काफी बड़ा कार्यक्रम 2022 में चलाया भी गया है और 75 जनपद जो उत्तर प्रदेश के हैं सभी 75 जनपदों में ये कार्यक्रम चलाया गया है और किसानों के बीच में काफी जागरूकता फैलाई गई है। तो इस कार्य के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश में फिर से जैसा जैसा संस्थान का निर्देश होगा और जैसी कार्यक्रम संचालन करने की वहां पे आवश्यकता होगी उसके हिसाब से संचालन जरूर करेंगे। ओम शांति। मैं एक बात और कहना चाहता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 21 अधिकारी यहां पर उपस्थित हुए हैं और सभी अधिकारियों की इच्छा है और सभी अधिकारियों ने ये विचार भी किया है कि जो हमारा कृषि और ग्रामीण विकास प्रभाग है वो देश में बहुत लगन से बहुत तत्परता से कार्य कर रहा है और उसका जो निर्देशन है वो परम श्रद्धेय आदरणीय हमारी सरला बहन जी के पास में है और उन्हीं के निर्देशन में कार्य हो रहा है। हमारे उपाध्यक्ष जो कृषि और ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष हैं वो भी हमारे बीच में हैं, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो मैं भाई बद्री विशाल जी से अनुरोध करता हूं कि वो आएं और ये जो छोटा सा प्रतीकात्मक सम्मान है उसको कराने का कष्ट करें। भाई बद्री विशाल जी,
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी, आपने अपने दिल की बात जो बताई कि आत्मनिर्भर किसान के द्वारा भारत को फिर से सशक्त और स्वर्णिम बना सकते हैं, जिसका आधार यौगिक खेती है और वो कार्य ब्रह्मा कुमारीज के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की ओर से बहुत अच्छी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। इसी कार्य की पावती कहें मराठी में, जो कि हमारे इस विंग को चलाने वाले, आगे बढ़ाने वाले, वृद्धिंगत करने वाले आदरणीय अध्यक्षा सरला दीदी जी और आदरणीय राजू भाई जी का स्वागत सम्मान करने के लिए ये 21 अधिकारियों का ग्रुप यहाँ पर उपस्थित है। हम कहेंगे आदरणीय मिश्रा जी, जिला कृषि अधिकारी, जो राजू भाई जी को बुके देकर के सम्मानित कर रहे हैं और साथ ही साथ पीके कनौजिया जी, उप कृषि निदेशक सरला दीदी जी को पुष्प देकर के सम्मानित कर रहे हैं। भ्राता वीरेंद्र सिसोदिया जो अपर कृषि निदेशक है, आदरणीय सरला दीदी जी को शॉल पहना रहे हैं और साथ ही साथ विजय कुमार सिंह जी, उप कृषि निदेशक राजू भाई जी से शॉल के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी, निदेशक राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, आदरणीय सरला दीदी जी को मोमेंटो देकर सम्मानित कर रहे हैं और जितेंद्र कुमार तोमर जी, आप राजू भाई जी को मोमेंटो के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार है आप सभी का ये सम्मान। आप, मैं कहूँ, डायरेक्ट ईश्वर पिता का कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आदरणीय सरला दीदी जी और आदरणीय राजू भाई जी ईश्वर की प्रेरणा से, उसके डायरेक्शन से, उनके गाइडेंस के द्वारा इस कार्य को चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो सम्मान तो दो विभूतियों का हुआ है, लेकिन यूं कहे ये ईश्वर का भी सम्मान हो रहा है, उसके अपने ही बच्चों के द्वारा। बहुत बहुत जोरदार तालियों से इन अधिकारियों का भी हम सम्मान करेंगे, अभिनंदन करेंगे, अभिवादन करते हैं। आदरणीय सरला दीदी जी, इन्हों को विशेष ईश्वर की घर से ईश्वर की ही याद दिलाने वाली गिफ्ट, इस पर सुप्रीम सोल अर्थात इस संस्थान का जो संस्थापक निराकार परमात्मा शिव का स्मृति चिन्ह है और आदरणीय जितेंद्र कुमार तोमर जी, आपको भी राजू भाई जी ये गिफ्ट देकर के सम्मानित कर रहे हैं। आप दोनों का भी विशेष हार्दिक अभिवादन है। स्वीट मेमोरीज तो हम जरूर बनाकर रखते ही हैं, तो ये भी एक गौरव की बात है जो इस भगवान के मंच पर आप उसी की तस्वीर को अपने हाथ में लिए ये संकल्प करेंगे कि इस कार्य को हम सारे भारत ही क्या पर विश्व भर में फैलाते रहेंगे। और इसका श्रेय जाता है हमारे आदरणीय बद्री विशाल भाई जी, जिनकी बहुत सालों से ये मेहनत चल रही है। राजू भाई जी आपका भी बुके देकर के सम्मानित कर रहे हैं। पहले आपका जो भगवान का दिया हुआ मंत्र है, आप अपनी शॉल उन्हों को उड़ाकर सम्मानित कर रहे हैं। बद्री विशाल भाई जी का भी विशेष आभार है, सम्मान है, अभिवादन है। अच्छा, हमारे सामने अभी अभी जिन्होंने अपने महान विचार व्यक्त किए, हमारे जितेंद्र कुमार तोमर जी, जिनको अभी इस सभा से छुट्टी लेनी है क्योंकि आप वापसी यात्रा के लिए निकल रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी यात्रा भी सफल रहे और जीवन की यात्रा में भी आप सदा सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहेंगे। अब इस प्रोग्राम के बाद हम आमंत्रित करते हैं आज के इस प्रोग्राम के वक्ता ब्रह्मा कुमार करण भाई जी, जो कि इस प्रभाग के सक्रिय सदस्य हैं। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप एक अच्छे मेडिटेशन टीचर हैं, आपके द्वारा हजारों लोगों ने इसका लाभ लिया हुआ है, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, 3000 से भी अधिक अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, स्कूल, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में आपने अपने विशेष आगे बढ़ने के लिए, सफलता के लिए मोटिवेशनल स्पीच दिए हुए हैं। और अभी जो अपना ब्रह्मा कुमारीज का तपोवन ये कैंपस है, जहां पर योगिक खेती का मॉडल बहुत सुंदर रीति से बना हुआ है, आप वहां पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आदरणीय करण भाई जी, आप अपना वक्तव्य यहां पर रखेंगे अपने अनुभव के आधार से।
ओम शांति, एक बार जोर से बोलेंगे, ओम शांति, ओम शांति। कैसा लग रहा है 3 दिन से इस प्रांगण में, ज्ञान सरोवर के अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं में आप सभी के ऊपर ज्ञान की रिमझिम हो रही है। और देखिए, प्रकृति भी मेहरबान हो गई और समय से पहले ही आप सभी के ऊपर जल की रिमझिम करने के लिए भी आ गई। तो मैंने पूछा, कैसा लग रहा आपको यहाँ पर? हाथ उठा के बताएंगे, अच्छा लग रहा, वाह। यहाँ पर जो भाई बहन सेवा दे रहे हैं, सफेद वस्त्रधारी, उनके चेहरे आप देख रहे हैं, उनकी ऊर्जा आप देख रहे हैं, कैसी ऊर्जा लग रही है आपको उनकी? हाँ जी, बहुत तेज लग रही है, ताली बजाएं एक तो उसके लिए। मैं अभी बैठे हुए सोच रहा था तो एक विचार आया कि आपसे एक प्रश्न पूछूं। स्वर्णिम शब्द आया हमारे इसमें टॉपिक में कि यदि भगवान ऐसा प्रोग्राम बना ले कि अब इस दुनिया को स्वर्ग बनाया जाए, यदि भगवान का प्रोग्राम बन जाए और उसको एक टीम बनाने की जरूरत पड़े, तो आपने जो यहाँ ज्ञान सरोवर में सेवा देने वाले मुस्कुराते हुए चेहरे सफेद वस्त्रधारी, क्या आप रिकमेंड करेंगे कि इनको भगवान की उस टीम में शामिल कर लिया जाए? जो करेंगे वो हाथ उठाओ, जरा जोरदार ताली बजाइए इनके लिए, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। एक और एक कितने होते हैं? हाँ जी, कोई बोल रहा है दो, कोई बोल रहा है 11, क्योंकि दोनों चीजें हमने सुनी है। लेकिन एक और एक 11 का अर्थ क्या है भाई? आपको कोई 1 रुपया देगा, फिर 1 रुपया देगा, 11 थोड़ी देंगे आप, तो पैसे के हिसाब से तो 2 ही देंगे। लेकिन इसका एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है कि जब सेम फ्रीक्वेंसी के, सेम मनसा के, सेम विचारधारा के 2 व्यक्ति नजदीक आ जाते हैं तो उनका ऑरा 2 नहीं होता, 11 के बराबर होता है। एनर्जी गेट्स मल्टीप्लाइड व्हेन सेम फ्रीक्वेंसी इज मैच्ड बिटवीन 2 पीपल। और यहां पर आप देखिए कितने ऐसे सकारात्मक एनर्जी वाले भाई बहन आप देख रहे हैं, और आपकी भी ऊर्जा 3 दिन में आप फील कर रहे होंगे काफी कुछ किस साइड गई है, पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड ही गई होगी, नेगेटिव तो बोलने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारे परम आदरणीय सरला दीदी जी, परम आदरणीय राजू भाई जी, सुनंदा दीदी जी, जो कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग है, जिन्होंने हमें यहाँ पर ज्ञान सरोवर में एकत्रित होने का अवसर दिया और इस ऊर्जा को फील करने का अवसर दिया। बहुत सी बातें आप खेती के बारे में, योगिक खेती, ऑर्गेनिक खेती 3 दिन से सुन रहे हैं, और बहुत सी अच्छी बातें अनुभवी भाई बहनों ने हमारे आपके सामने रखी। आज का टॉपिक हमारा है स्वर्णिम सशक्त और आत्मनिर्भर। मेरे को 34 ईयर्स हुए हैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए। जब मैं 20 साल का था तब मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा था, और उसी समय मैं भारतीय वायुसेना में मैं चला गया। केवल कुछ दिन ब्रह्मा कुमारी बहनों के नजदीक रहा था, ज्ञान भी डिटेल में नहीं लिया था, लेकिन पता नहीं क्या अंदर मुझे किसी चीज ने खींचा, और भले ही मैं वायुसेना में, वहां पर सब माहौल होता है, शराब होती है, कबाब, सब कुछ नेगेटिव वायुमंडल होता है, पर वो कुछ दिन का जो संपर्क था इन बहनों का, और इन्होंने बताया हमको कि अब स्वर्ग आने वाला है, अब सत्युग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम इन महान हस्तियों के नजदीक होते गए, वैसे वैसे हमें निश्चय होता गया कि अगर धरती पर कोई स्वर्ग लाएगा तो ये आत्माएं ही लेकर के आएंगी, ये निश्चय हमको हो गया। क्योंकि इनके शब्दों में, इनके सोच में और कर्मों में अंतर नहीं मिलेगा आपको जब आप इनके नजदीक आएंगे। और आज मुझे 34 वर्ष हो गए, और मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को कहता हूं। मैं ये बात आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं? क्योंकि आज ज्ञान बहुत वितरित किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन बहुत है, भाषण बहुत है, परंतु आप क्या समझते हैं, आज सिर्फ इन्फॉर्मेशन की जरूरत है या एनर्जी ट्रांसफर की जरूरत है? क्या कहेंगे? भाषण तो होते हैं, लेकिन उन्हीं भाषणों को ऊर्जा में कन्वर्ट करना है। कितनी प्लानिंग्स बनती हैं, सरकार की भी बनती हैं, आपकी पर्सनल भी बनती हैं, लेकिन उसमें भी जितनी हम प्लानिंग बनाते हैं, किसी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा, हम सुनते हैं टन भर, सुनते हैं टन भर, सोचते हैं मन भर, पर करते हैं कण भर। यानी नहीं, ये अच्छी बात नहीं थी, स्लोगन अच्छा था लेकिन वैसे बात अच्छी नहीं थी। कहने का भाव ये है कि जब हम प्रैक्टिकल तक आते हैं तो वो बहुत कम हो जाता है, मेहनत ज्यादा और रिजल्ट कम। तो इसको कैसे हम बढ़ाएं, कैसे हम अपने भारत को फिर से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएं, तो राजयोग की जो विद्या यहाँ पर दी जाती है, जिसका आपको भी सवेरे सवेरे कुछ चक्का चुकी थोड़ा करवाई जा रही है, सिखाया जा रहा है, इस राजयोग से ये संभव है। क्योंकि ये राजयोग हमारी करनी और कथनी को एक समान बनाता है, किसी भी कार्य को। ये लक्ष्य एक हमारा कि भारत को स्वर्णिम बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन जब तक लक्ष्य में विजन क्लियर नहीं होगा, विजन क्लियर नहीं होगा यानी जहन में वो चित्रण क्लियर नहीं होगा, तब तक हम सफल नहीं हो सकते किसी भी कार्य में। इसलिए सबसे पहले आप जो भी यहां पधारे हैं, आप यहां से एक संदेश लेकर के जाइए कि अब हमें स्वर्णिम भारत का अपने जहन के अंदर चित्रण क्लियर करना है। देखिए, हम अपने अपने मकान बनाते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते ही हमारे अंदर नक्शा बनना शुरू हो जाता है और बड़ी आश्चर्य की बात होती है, थोड़े दिन के बाद जैसा दिमाग में नक्शा बनता है उसी प्रकार का वो बिल्डिंग बनकर खड़ी हो जाती है। अगर हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी उसमें अभी हमें और ऊर्जा लानी है, तो उसमें हमें शुद्धता लानी पड़ेगी अभी और। जो भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे हमारे गवर्नमेंट के हैं या पर्सनल चेंज के हैं, क्योंकि जब तक हमारे अंदर वो पवित्रता की फीलिंग नहीं होगी, प्योरिटी सच्चाई की फीलिंग नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी। यहां जो सशक्त शब्द बोला, यहां कौन सी शक्ति की बात की है? क्योंकि पहले ही हम आर्मामेंट की पावर यानी बंदूक गोलों की शक्ति तो आज दुनिया में इतनी है कि हम इस दुनिया को 10,000 बार खत्म कर सकते हैं। यहां जो ये शक्ति की बात की जा रही है, ये कौन सी शक्ति है? ये आध्यात्मिक शक्ति की बात की जा रही है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमारे अंदर की शक्ति को जागृत करता है, क्योंकि हमारी अंदर की शक्ति ही जब चैनलाइज होगी। आज इन सभी के भाई बहनों के शब्दों में आप जो शक्ति देखते हैं, पावर देखते हैं, वो इनके लंबे समय का अनुभव है, खुद जी करके देखा हुआ अनुभव है। जो कहता है इनकी आंखों में आप देखोगे वो नक्शा, जो हम स्वर्णिम भारत का नक्शा बना रहे हैं। बाहर आप किसी व्यक्ति से बात कर लीजिए, ज्यादातर ये आपको कहते हुए मिल जाते हैं लोग, सभी नहीं होते, ज्यादातर भारत में कोई भी ऐसी त्रुटि हो रही है तो क्या कहेंगे? भाई ये इंडिया है, ये तो भारत है। यानी अपने ही देश के बारे में जो विजन है वो विजन वीक बना लेते हैं। लेकिन हमें यदि भारत को स्वर्णिम बनाना है तो इसके लिए हमें बहुत सुंदर सशक्त विजन अपने मन के अंदर बनाना है और भगवान की इस टीम में जुड़ना है हमको। फिर वो प्रोजेक्ट चाहे योगिक खेती का हो हमारा, फिर संस्कार परिवर्तन का हो, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी केवल योगिक खेती नहीं सिखाते, योगिक खेती के साथ अच्छे संस्कारों की खेती कैसी की जाए वो भी सिखाते हैं, क्योंकि संस्कारों से ही संसार बनता है। आपने कहावत सुनी होगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी दृष्टि होती है, देखिए एक व्यक्ति की दृष्टि संसार कैसे बदलती है, शॉर्ट में बताऊंगा। जैसी दृष्टि होती है वैसी स्मृति होती है, स्मृति से वृत्ति बनती है, वृत्ति से कृति बनती है, कृति से स्थिति बनती है, स्थिति से संस्कार बनते हैं, संस्कार से संस्कृति बनती है, और हजारों संस्कृतियां मिलकर संसार यानी सृष्टि का निर्माण करते हैं। यानी यदि एक व्यक्ति की दृष्टि को बदलने का हम पुरुषार्थ करें, एक व्यक्ति माना हर कोई अगर ये पुरुषार्थ करे तो हम सृष्टि को बदल सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऑर्गेनिक खेती के साथ ये वाली खेती भी सिखाते हैं, और इसने हम सभी का जीवन भी बदला और आप सभी भी इसके साथ जुड़ करके अब इस प्रोजेक्ट को भारत को स्वर्णिम बनाना ही है। कौन कौन चाहते हैं भारत को स्वर्ग बना दिया जाए, थोड़ा हाथ उठाएं। बहुत अच्छा है, ताली बजाएंगे जोरदार अपने लिए। लेकिन केवल हाथ उठाने से तो नहीं होगा, हम सभी को आत्मचिंतन करना है। जो भी आपने तीन दिन में यहाँ सभी महानुभावों से सुना है उसके ऊपर खूब चिंतन कीजिए और फिर भी आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए कि किस प्रकार से हम यूनाइट होकर, क्योंकि अकेले अकेले को ये संसार चलने नहीं देता है, यूनाइटेड होकर के। बचपन में कहानी सुनी थी किसान के बच्चों की, एक एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देता है, लेकिन जब हमारी यूनाइटेड पावर होगी तो हम अवश्य ही इस संसार को स्वर्णिम बना सकते हैं। आत्मनिर्भर जो शब्द आया, ब्रह्मा कुमारी इसमें दोनों तरफ से काम कर रही है। एक तरफ तो आपने देखा साइंटिफिक मेथड से, योगिक मेथड से कैसे हम खेती में भी नई एक विचारधारा खेती में ला रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज व्यक्ति दो चीजें होती हैं, एक नीड जोन एक ग्रीड जोन होता है। तो आज व्यक्ति ज्यादा किस में जी रहा है, नीड जोन या ग्रीड जोन? हाँ जी, ग्रीड जोन में जी रहा है। उसकी आवश्यकताएं आज भी इतनी ही हैं, परीक्षाएं अनलिमिटेड हैं। इच्छा भूख और नींद को कितना भी बढ़ा लीजिए कितना भी कम कर लीजिए, ब्रह्मा कुमारीज में आप आएंगे जो आपकी मूल आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं में लिमिट हो जाते हो आप सत्य ज्ञान के आधार पर। तो आत्मनिर्भर होने में इसका बहुत बड़ा, क्योंकि व्यक्ति की जितनी इच्छाएं होंगी उतना ही फिर उसको पसारा फैलाना पड़ता है, उतना ही फिर समस्याएं आती, उतनी झगड़े बढ़ते हैं। तभी कहा इच्छाएं ही मूल हैं सभी दुखों का। तो हमारा कहने का भाव यही है कि अभी हम अपनी सूक्ष्म ऊर्जा को भी, अभी तक हमने स्थूल ऊर्जा बहुत लगाई, लेकिन ब्रह्मा कुमारी आपको ये सिखाती है कि अपने अंदर छुपी हुई सूक्ष्म ऊर्जा इस्तेमाल करें राजयोग के माध्यम से, और हम अवश्य ही सफल होकर के दिखाएंगे और इस भारत को स्वर्णिम सशक्त और आत्मनिर्भर बनाकर दिखाएंगे। अगर ये संकल्प पक्का है तो विजय भी हमारी पक्की है, क्योंकि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे करण भाई जी। अपने वक्तव्य के बीच दो बारी आपने सभा से हाथ उठवाए हैं कि भगवान जब स्वर्ग का निर्माण करने की टीम बना ही रहे हैं उसमें कौन कौन शामिल होंगे, और आप सभी ने दिल से अपना हाथ उठाया है। कहीं यहां से जाने के बाद भूल तो नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। इसके लिए ब्रह्मा कुमारीज की हजारों शाखाएं जो कार्यरत है पूरे भारतवर्ष में, आप अपने लोकल ब्रांच के साथ कनेक्ट रहिएगा, मेडिटेशन सीखिएगा और अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए जो कि संस्कार परिवर्तन की खेती अभी भाई जी ने बताई, या स्थूल खेती की बात हो या समाज परिवर्तन की सेवा की बात हो, तो उसके लिए आप वहीं से प्रेरणा गाइडेंस और ईश्वरीय शक्तियों को लेकर उसको आप सफल बना सकते हैं। धन्यवाद करण भाई जी। अब इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे अतिथि आदरणीय भ्राता शिशुपाल पटले जी। आप भंडारा गोंदिया से, महाराष्ट्र से पधारे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष जिला परिषद भंडारा, भूतपूर्व चेयरमैन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी, भूतपूर्व सदस्य ऑफ पार्लियामेंट भंडारा और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ किसान मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश। ऐसे अलग अलग प्रकार के आपके कार्य चलते आ रहे हैं, अभी आप ब्रह्मा कुमारीज के इस अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में आकर आपने क्या प्रेरणा ली है आप हम सबके समक्ष रखेंगे। आदरणीय शिशुपाल पटले जी।
ओम शांति। ज्ञान सरोवर के इस पावन धरती पर विराजमान मंचासीन महानुभाव जिनका आशीर्वचन हमें प्राप्त होगा, ऐसे ब्रह्म कुमारी सरला बहन जी, आज के इस समारोह के अध्यक्षा ब्रह्म कुमारी सुनंदा बहन जी, इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता ब्रह्म कुमार राजेंद्र भाई जी, वक्ता ब्रह्म कुमार करण भाई जी, आज के इस समारोह के अतिथि भ्राता बीएल मीना जी, मंच पर विराजमान ब्रह्म कुमार शशिकांत भाई जी एवं ब्रह्म कुमारी शोभा बहन जी, उपस्थित इस कार्यक्रम के लिए आए हुए देश के कोने कोने से हमारे किसान भाई और बहनें, मैं सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के खेती एवं ग्रामीण विकास विभाग के आयोजकों को तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आज समय की पुकार है और उस समय के पुकार को देखते हुए उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया। हम लोग 3 दिन से यहां पर उपस्थित है और 3 दिन से हम लोग काफी अच्छे वक्ता, वैज्ञानिक, इस क्षेत्र में काम करने वाले अनुभवी लोग इनका व्याख्यान सुने, उनका अनुभव हमने यहां पर 3 दिन से ले रहे। इससे यह चित्र स्पष्ट हो गया कि कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जो यह कार्यक्रम हाथ में लिया है वह कार्यक्रम आज समय की पुकार है। खेती का यह विषय काफी जटिल विषय है और भारत के लिए बहुत बड़ा विषय है और ऐसे जटिल और बड़े विषय को हाथ में लेने का कार्य प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने लिया, यह सचमुच एक ईश्वरीय कार्य है। आज हमें यह व्यतीत हो रहा और यह भी जानकारी आपको रहनी चाहिए कि हमारे भारत में आज से 9000 साल से खेती का व्यवसाय है। सिंधु घाटी से खेती की शुरुआत हुई और खेती उस समय पुरातन काल में इस तरह से होती थी, नैसर्गिक खेती होती थी, इतने साधन संसाधन नहीं थे, मशीनें नहीं थी और अपने नैसर्गिक पद्धति से जो खेती होती थी उसका खर्चा भी कम आता था और उसके कारण हम खेती में अपने अनाज की पैदावार भी बहुत ज्यादा करते थे। उसके कारण विश्व का आधा अनाज का उत्पादन हमारे भारत में होता था और हम निर्यात भी करते थे। अब हमारे पूर्व वक्ताओं ने यहां पर जानकारी दिए कि हम लोग अपना अनाज दूसरे देशों को देकर वहां से सोना लाते थे और इसलिए भारत में भारत का नाम सोने की चिड़िया पड़ा था। लेकिन हमारा सोने की चिड़िया कहने वाला भारत देश, जिस पर विदेशी आक्रमण हुए, अंग्रेजों के पहले भी हमारे देश पर कई आक्रमण हुए और आक्रमणों के कारण हमारे देश की संपत्ति को लूटा गया। हमारी भारत की संस्कृति ऐसी थी जिसको विश्व गुरु माना जाता था, विश्व गुरु मानने वाला कहने वाला यह देश जिसको लूटने का काम, जिसकी संस्कृति को बर्बाद करने का काम विदेशी आक्रमणों के द्वारा हुआ, और इसलिए हमारी पुरानी संस्कृति को हम भूलते गए, उस तरह के हमारे सामने दृष्टांत रखे गए और विदेशी संस्कृति को अपना कर हमने अपनी संस्कृति को भूलना शुरू किया, जिसका फलस्वरूप आज हमें, आज जो हम भोजन करते हैं उस भोजन में एक वर्ष में हमारे पेट में 700 ग्राम जहर पॉइजन हम खाते हैं, और वह जहर वह पॉइजन हमारे शरीर में अगर 700 ग्राम साल भर में अगर जाता होगा तो उस जहर के कारण हमारे खून में, हमारे शरीर में किस तरह की व्याधियां प्राप्त होगी, किस तरह की बीमारियां प्राप्त होगी। और इसलिए हमको देखने को मिल रहा है कि पहले कैंसर का नाम हमने सुना नहीं था, देहातों में कैंसर क्या होता है ये पता नहीं था, शुगर क्या चीज है ये पता नहीं थी, लेकिन आज शुगर, कैंसर, बीपी, इस तरह के जो ये जो सामान्य यह बीमारी आज सामान्य होते जा रही है, गांव-गांव में कैंसर के पेशेंट मिलते जा रहे हैं। इसका कारण ऐसा है कि हमने इस तरह का विष खाना चालू कर दिया, और इसलिए आज समर की पुकार है कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के कृषि एवं ग्रामीण विभाग ने उस चीज को पहचाना, जाना, और यह समय के पुकार के साथ में यह बेड़ा उन्होंने उठाया है। मैं उनको तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। पहले हम नैसर्गिक खेती करते थे, नैसर्गिक खेती के बाद में अनाज का उत्पादन भी ज्यादा करते थे। जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन आया, हमारे संस्कृति को मिटाने का प्रयास हुआ, पाश्चिमात्य संस्कृति को अपनाना हमने शुरू किया, और उसी के कारण हमको यह देन देखने पड़े। आज हम यूरिया, यह जो खाद है, इस यूरिया का खाद का नाम पहले हमने आजादी के पहले कभी सुना नहीं था। आजादी के बाद में हमारे देश की आर्थिक उन्नति करने के लिए, खेती की उन्नति करने के लिए हमने ज्यादा उत्पादन देने वाले इस तरह के रासायनिक खादों का व्यापार किया, दूसरे देशों से हम आयात करना शुरू कर दिए, और 1960 से हमारे देश में यह यूरिया खाद को हमने उपयोग में लाना चालू किया, जिससे हमारी फसल ज्यादा होती थी हमने महसूस किया, लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या होने वाले हैं इसकी जानकारी हमें नहीं रहने के कारण हमने उसका उपयोग कर लिया। उसका नतीजा आज हमारी खेती बंजर होते जा रही है, उत्पादन कम भलाई बढ़ते होगा, लेकिन हमारा आधुनिक पद्धति से खेती करने का जो तरीके से हमारा उत्पादन का खर्च बढ़ा, और उसके कारण हमको खेती आज आर्थिक रूप से हमें बिजनेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमको पूर्ति नहीं है। और इसलिए आज नैसर्गिक खेती शाश्वत यौगिक खेती के ओर हमको मुड़ना होगा। और आज हम तीन दिन से यहां पर हम देख रहे हैं कि एक राजयोग के द्वारा हम ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करें, और वह शक्ति के द्वारा हम खेती में जाकर एक भावनात्मक विषय को लेकर खेती में जाए। हम पहले के जमाने में खेती का काम करते थे तो खेती में जाने के पहले, खेती की शुरुआत जब होती थी, मौसम शुरू होने के पहले हम पूजा करते थे, भगवान का नाम लिया जाता था, और इस तरह से खेती का काम करते समय हमारे मजदूरों के द्वारा एक धार्मिक गीतों का वहां पर आयोजन होता था, रोज वहां पर आयोजन होता था, और इस तरह से एक धार्मिक भावना उस खेती के साथ, फसलों के साथ हमारी जुड़ी रहती थी, और उसके कारण फसलें भी हमको ज्यादा मिलती थी। लेकिन आज हमारे देश में परिस्थितियां काफी विपरीत होते जा रही है। आज हम सशक्त भारत, स्वर्णिम भारत, यह सपना देखने के लिए हम यहां पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया। यह अगर सपना हमको साध्य करना होगा तो हमको ये राजयोग के द्वारा आध्यात्मिक खेती की ओर जाना होगा, नैसर्गिक खेती हमको करना पड़ेगा, उसके कारण हमारा खर्चा खेती में कम होगा, उत्पादन ज्यादा होगा, हमारे मन के साथ तन का भी विचार करना पड़ेगा, हमारे तन को लगने वाला खाद्य है यह भी विष मुक्त होना चाहिए, और ऐसा एक अच्छा संगम हम प्रस्तापित हमारे खेती में करें, और इस आधार से हमारे को इस भारत को आगे ले जाने की आवश्यकता पड़ रही है। और इसके अलावा मैं एक बात कहूंगा, समय काफी होगा, हमारे दीदी जी का मार्गदर्शन हमें सुनना महत्व का है। हमें भारत को अगर सशक्त करना होगा तो आपने सुना होगा अभी 2-6 महीने के पहले वोकल फॉर लोकल यह कार्यक्रम भारत में काफी जगह मनाया गया। वोकल फॉर लोकल यह कार्यक्रम का अर्थ ऐसा है कि हम अपने ही देश की चीजों को हमने वापरना। गांधी जी ने जब देश की आजादी के लिए लड़ाई किया, विदेशी चीजों को ज्यादा वापरना कर दिए थे, हमारे देश का पैसा दूसरे देशों में जाता था। और भारत को सक्षम बनाना है तो हमने विदेशी वस्तुओं का वापर करने के लिए महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी का नारा हमको दिया, और वह स्वदेशी का नारा हम दिनों दिन भूलते गए। और वहीं से उसके बाद हमको यह आवश्यकता पड़ी वोकल फॉर लोकल, यह कार्यक्रम लेकर जनता के बीच में जाने की, ताकि हमारे देश में पैदा होने वाली चीजें ही हम वापरे, चाहे खेती में निर्माण होने वाली चीज हो, चाहे कोई वस्तुएं होए, यह सारी चीजों को हम अगर अपनाएंगे तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा। आज ये हम योगी खेती की ओर जा रहे हैं। आज यूरिया, आज 1960 से हमारे देश में हम आयात कर रहे हैं। मुझे लगता है 95 लाख टन के आसपास हम हर साल यहाँ कृषि के तज्ञ होंगे, कुछ भारत सरकार के भी अधिकारी यहाँ पर हैं। मेरे जानकारी के हिसाब से 95 लाख टन हम यूरिया को आयात करते हमारे देश में, और इसके लिए हमारा 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपया हमारे भारत का दूसरे देशों में इस खादों के पीछे में जा रहा है। अगर हम यह खेती करते हैं भावनात्मक सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर, हमारी आध्यात्मिक खेती नैसर्गिक खेती अगर हम करते हैं, तो हमारा यह पैसा देश के देश में रहेगा और हमारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग होगा। और इसीलिए हमको इस कार्यक्रम के माध्यम से काफी जानकारी हमको मिली, काफी अनुभव यहां पर आया। 3 दिन से मुझे भी हम लोग हमारे जीवन के ऐसा लगा कि हमारे जीवन के इतने वर्ष हमारे व्यर्थ गए। हम अगर यहां 20-30 साल से जुड़ जाते तो हमारे जीवन का और भी कुछ नजारा रहता, लेकिन हमारे को आज अफसोस हो रहा है कि इस संस्थान के साथ हम जुड़े नहीं, और शायद भगवान ने हमको बुलाया नहीं, लेकिन यहां पर भगवान ने हमको बुलाया। और यहां आने के बाद मुझे कल एक हमारे भाई जी मिले, उन्होंने भोजन करते करते, हमारी जान पहचान नहीं थी, लेकिन वो खुद होकर आए और उन्होंने बताया कि इस धरती पर आपने पैर दिया, 1,000 गाय दान करने का जो पुण्य मिलता है उतना पुण्य इस धरती पर पैर रखने से होता है। यह जानकारी हमको जब मिली और यहां पर रहने के बाद हमने सचमुच अनुभव किया। और भलाई हम राजनीति में काम करते हैं, राजनीति का क्षेत्र अलग हो, लेकिन यह सचमुच यह क्षेत्र एक पवित्र क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हमने अपनाना चाहिए, और यही क्षेत्र के माध्यम से, इस आध्यात्मिकता के माध्यम से हमारे देश को हम आगे बढ़ाने का संकल्प यहां से हम करें। हमारे किसान भाई हर राज्य के कोने कोने से यहां पर आए हैं। मैं सबसे विनंती करता हूं, जैसे देश के आजादी की लड़ाई के लिए कुछ क्रांतिवीरों ने पहले बेड़ा उठाया, और वो गिने चुने क्रांतिवीर थे और जिनका नाम आज इतिहास में लिखा गया, शहीदों के यादी में भी उनका नाम आया, लेकिन आज हम उनको पूजते हैं। वैसे यह शाश्वत खेती को अगर हम करने का मौका पड़ेगा और उस तरह से हम लोग इस भारत देश को सक्षम बनाने के लिए, इस तरह की योगिक खेती के माध्यम से हम भारत को सशक्त बनाने के लिए, यहां पर बैठे हुए हर राज्य से आए हुए किसान भाइयों ने अगर योगदान दिया और यहां से जाने के बाद हम अपने से शुरुआत अगर कर दिया, तो हमारे भारत को सक्षम बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में समय नहीं लगेगा। इतनी विनंती करता हूं और मेरा मार्गदर्शन यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अतिथि शिशुपाल पटले जी। आपने कहा कि शायद भगवान ने इसके पहले हमें बुलाया नहीं होगा। सच्ची में कभी आपको ब्रह्मा कुमारीज का निमंत्रण नहीं मिला था, या मिला था? कभी मिला था, लेकिन शायद आपके पास उस समय समय नहीं होगा। क्योंकि एक हंसी की बात मैं बताऊं, हम इस्लामपुर से हैं तो वहां के ग्राम विकास मंत्री जो यहां होके गए हैं, अन्ना साहेब डांगे जी, उनके घर एक बार हम गए थे और 3 दिन राजयोग शिविर के बारे में उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि बहन जी ये तो हमें बहुत पसंद आएगा, लेकिन बात यह है सच दिल की कि हमें मरने के लिए भी समय नहीं मिल रहा है, तो 3 दिन कैसे हम समय निकालेंगे। तो ये बात होती है कि इतने पहले समय से ही भगवान की सब बच्चों के ऊपर नजर तो है, कृपा दृष्टि है, उसके दिल में हर एक के लिए बहुत ऊंची भावनाएं हैं, लेकिन कहा जाता है समय से पहले और भाग्य से ज्यादा, तो वो वाली बात है। लेकिन अभी फिर भी भाई साहब समय नहीं गया है, ये समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी ये जो शाश्वत योगिक खेती का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसी को आप साथ लेकर अपनी एरिया में हजारों किसानों को इसके साथ जोड़ेंगे तो भी एक ईश्वर का राइट हैंड बनकर उसके दिल पर अपनी छाप बना सकते हैं और अपना भविष्य भी पुण्य का खाता बहुत बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। अब इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुनंदा दीदी जी, जो कि इस शाश्वत योगिक खेती प्रोजेक्ट के यूं कहें निर्माता है, क्योंकि इसका पहला प्रयोग कोल्हापुर जिले में इचलकरंजे में हुआ है, जिनका आप आज सवेरे बालासाहेब भाई से सुना है। एक बहुत ही शांत शीतल, जिनकी सोच में संसार के हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना और साथ ही साथ हरेक का नाता उस गॉड के साथ कैसे जुड़े, और उनके दिल में वो परमात्म शक्तियां परमात्म वरदान कैसे सफलता के लिए आगे बढ़ने का साधन बने, उसके प्लान जिनके मस्तिष्क में सदा चलते रहते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय सुनंदा दीदी जी कोल्हापुर सेवा केंद्र संचालिका तो है ही, लगभग 78 से आप इस भगवान के पथ पर चल रहे हैं। जबकि उनकी कॉलेज की पढ़ाई शुरू थी, उसके बाद आपने MSCB में जॉब भी करते थे, लेकिन भगवान के दिल में कुछ और होता है, नर कुछ एक चाहे और नारायण कुछ और चाहे, उस हिसाब से उन्होंने उसको भी रिजाइन देकर इसी सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया 1981 में। तब से लेकर कोल्हापुर और अभी पुणे सब जोन जो है मीरा सोसाइटी, तो उसका भी पूरा चार्ज आप संभाल रहे हैं। लगभग 8 जिलों में 150 से भी अधिक सेवा केंद्र है जिनका आप संचालन कर रहे हैं, 500 से अधिक गीता पाठशालाएं हैं और 15,000 से अधिक भाई बहने आपसे मार्गदर्शन लेकर राजयोग की शिक्षाएं पाकर अपना जीवन निर्व्यसनी निर्विकारी और चरित्रवान बनाने के प्रयास में है। ऐसी एक बहुआयामी हस्ती है आदरणीय सुनंदा दीदी जी। आप अपने दिल के अनुभव से हमारी इस सभा को संबोधित करेंगे। सुनंदा दीदी जी।
ओम शांति। भारत को फिर से स्वर्णिम सशक्त आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस धरा पर आए हुए भगवान को, परमात्मा को, ईश्वर को जानकर मानकर उसके डायरेक्शन प्रमाण सेवा होवे, दिव्य गुणों की धारणा में आगे बढ़ने वाले, निरंतर आगे बढ़ने वाले हम सब की अति प्रिय अत्यंत आदरणीय सरला दीदी जी, राजू भाई जी, सेवा साथी करण भाई जी, राजेंद्र भाई जी, शोभा बहन जी, शशिकांत भाई जी, अभी अभी जिन्होंने अपने विचार हम सबके आगे रखे, वो हमारे प्रिय भाई पटेल जी, और आप सबके लिए क्या कहे, तीन दिन आप सभी जैसे कि तपस्या में बैठे हो, एक स्थान पर, एक हॉल में, कल का सारा दिन, परसों का 1/4 दिन, आज सारा दिन, तो आप सभी किसानों के लीडर, हजारों किसानों को मार्गदर्शन करने वाले, जिसको हम कहें लाइट हाउस, माइट हाउस, ऐसे आप सभी भाई बहन सभी बार बार सर्व के मुख से ये सुन रहे हो कि भारत फिर से स्वर्णिम बनने जा रहा है, सशक्त बनने जा रहा है, आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। और ये जो समाचार है, ये मैंने 76 में सुना, 2-3 साल समझने में गए और उसके बाद उसको समझकर हम इसके अंदर समर्पित हो गए। तब से लेकर के मैं इन आंखों से देख रही हूं कि कैसे ये भारत देश को नहीं परंतु विश्व को, भगवान के लिए तो सारा विश्व ही उसका है, तो वो सारे विश्व को किस प्रकार वापस फिर से शब्द को कहा जाता है इंग्लिश में हिस्ट्री मस्ट रिपीट। हमारे मराठी में कहते हैं सृष्टि चक्र है अविरत फिरते, दिवसा मागुन दिवस है ये थे चक्र। और हिंदी में कहा है फिर से, संस्कृत में कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्म्यनम सुजाम्यहम्। बस आप सभी बहुत सुजाग लोग हैं, विद्वान हैं, सोचने वाले लोग हैं, करने वाले भी अपने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ करने वाले लोग भी हैं। आपके लिए ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप आइए और थोड़ा सा समझिए। हम जब इस ज्ञान में आए तब हमको कहा जाता था यहाँ की फीस क्या है, तो कहते थे यहाँ की फीस है 1 आना। उस समय 1 आना था। और फिर बहने क्लियर करती थी 1 आना माना दिन में 1 बार आना। तो आप सभी आज टाइम फिक्स करके जाइए कि कैसे हम सेवा केंद्र पर 1 घंटा दे सकते हैं। इसको समझने के लिए, क्योंकि सृष्टि का नियंता है भगवान, कंट्रोलर है वो, रचयिता है वो, पतित पावन है वो, बिगड़ी को बनाने वाला है वो। आज सृष्टि बिगड़ गई है, किसी ने कहा भी है सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला रे आसमान। कितना अब आप आगे का बोल, बदल गया इंसान, तो इंसान किस में बदला? श्री लक्ष्मी का भी नाक देखो तो इधर ही है, कान इधर ही है, लेकिन इंसान बदल गया। उस आंखों के द्वारा क्या देखना है उस चीज को, कानों से क्या सुनना है उस चीज को, माना कान बिगड़ गए, मुख बिगड़ गया, मन बिगड़ गया। और आप सभी बहुत शून्य लोग हैं, इस बात को समझेंगे कि चीज अपने आप नई नहीं बनती, नई चीज पुरानी अपने आप बनती है। किसी चीज को यूज भी नहीं करो तो भी वो पुरानी हो जाती है, लेकिन नई बनानी हो तो कोई बनाने वाला चाहिए। वस्तु बिगड़ती है क्योंकि मनुष्य ने बनाई, तो मनुष्य उसको वापस बनाता है, लेकिन सृष्टि तो भगवान ने बनाई, भगवान रचयिता है, हम सब उसके रचना है। और ये रचना बिगड़ गई किस चीज में? तीन बातों में। बस भगवान कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताता है, बहुत सहज सहज कहता ही है, सहज राज्यों, सहज ज्ञान, इतना तक कहता है कि बच्चे बाप बच्चों को हर बात इजी करके देता है, कठिन नहीं। तो तीन बातें बिगड़ गई, देखना, बोलना और करना। और इसको आप रियलाइज करेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। किसान से लेकर के आईएएस तक भी देखो आप, इन तीन बातें बिगड़ गई, सोच बिगड़ गई, निगेटिव थॉट आ गए, वाणी में निगेटिविटी आ गई, तिरस्कार आ गया, क्रोध आ गया, और कर्म में। तो भगवान फिर तीनों बातों को ठीक करता है। कैसे ठीक करता है? ज्ञान और योग से। उसने ज्ञान दिया, तीन चीजें आप लेके जाना, उस पर उसको स्वीकारना अंदर तक, बहुत फायदा होगा आपको, बहुत माना जीवन के हर क्षेत्र में होगा, चाहे आपका पारिवारिक क्षेत्र हो, ऑफिस का हो, धंधे का हो, शरीर भी है। हम तो ये अनुभव करते हैं कि हर बात के लिए ये परमात्म ज्ञान और परमात्म योग व्यक्ति को मदद करता है श्रेष्ठ बनाने में, पॉजिटिव बनाने में, प्योर बनाने में, पावरफुल बनाने में। और आप तो इतने अच्छे पढ़े लिखे भाई बहन हैं, आपको तो ऐसा मैं कहूंगी, आपका सोने की रिंग रेडी है, आप उसमें ही हीरा बिठा दो, फिर देखना कैसे आपका जीवन निश्चिंत, निर्मल और बहुत ही सुखमय, आनंदमय, प्रेममय बन जाता है। तो उसके लिए तीन बातें ले जाना, आत्मनिर्भर, मैं हूं ही आत्मा, पहले देवात्मा थी अब साधारण आत्मा बन गई हूं, फिर राजयोग के माध्यम से जैसा संग वैसा रंग, जब मन को परमात्मा के संग में जोड़ देते हैं तो परमात्मा का रंग अपने आप आ जाता है, बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है। योग माना बहुत सुंदर सुंदर विचार, रियल को रियलाइज करना ही योग है। हम रियल को भूल गए हैं, आर्टिफिशियल बहुत पकड़ के चल रहे हैं, तो रियल को रियलाइज करना ही योग है। रियल हम आत्मा है, उसको रियलाइज करो। रियल हम भगवान की संतान है, ईश्वर की संतान, तभी हम सभी बोलते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना। आपने यहां देखी होंगी, आपको आश्चर्य लगेगा, हम आठ आठ दस दस बहनें इकट्ठी रहती हैं, लेकिन हमें हम इसमें जाते नहीं है कि किसकी क्या कास्ट है, नहीं जाते हैं, आपस में इतना प्यार से शांति से रहते, एक दो को समझ करके चलते हैं। कैसे हुआ? हम सभी ने परमात्मा को अपना पिता स्वीकार किया। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, बोलते तो है ही, भगवान रियलाइज कराता है बच्चे कैसे तुम मेरे बच्चे हो, शरीर के दृष्टि से नहीं, वो तो अलग अलग रहेंगे, लेकिन शरीर को चलाने वाली जो चेतना है, चेतना अजर अमर अविनाशी है, देवात्मा थी साधारण बन गई है, और इसका पिता परमात्मा है। तो हम सब बहुत प्रेम प्यार से अपने आप चलना शुरू कर देते हैं, आत्मनिर्भर बन जाते हैं, सशक्त बन जाते हैं। ऐसे नहीं हम लोगों के आगे कोई बात नहीं आती है, आती है, लेकिन हम कभी टेंशन में नहीं आते हैं, हम कभी नाराज नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमें भगवान ने इतने सुंदर सुंदर टिप्स दिए हैं, बच्चे कैसे चलो इस दुनिया के अंदर, आप सुनेंगे ना आपके आंखों से पानी आएगा, भगवान के प्रति प्यार बढ़ेगा आपका। और भगवान ये नहीं कहता कभी भी सब छोड़ करके मेरे पास बैठो, वो तो और ही कर्म योगी बनाता है। कर्म तो करना ही है, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर हो आप, लेकिन कर्म वाणी बिगड़ गई है, जिस कारण दुख आया है, जिस कारण टेंशन आया है, वो कौन रियलाइज कराएगा हमको? वो भगवान रियलाइज कराता है बहुत सुंदर रीति से। एक भगवान की विशेषता हमने देखी, देखो कुछ बनने के बाद लोग बहुत महिमा करते हैं, लेकिन भगवान की विशेषता क्या है? आप कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी महिमा करके 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 वो आपको महान बना देता है। ये आप सभी अनुभव करना, ये अनुभवों की चीजें है, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। और फिर स्वर्णिम बन जाते हैं। स्वर्णिम का आधार क्या है? संसार स्वर्णिम बनेगा स्वर्णिम विचारों से। स्वर्णिम विचार, उसके आधार से स्वर्णिम बोल, उसके आधार से स्वर्णिम कर्म, उसके आधार से संस्कार स्वर्णिम, संसार स्वर्णिम, जैसे हमारे राजेंद्र भाई ने बताया, करण भाई ने बताया। तो आज के दिन हम सभी इसी बात को लेके जाएंगे। भगवान के पांच महावाक्य सुनाऊंगी, आप इसका प्रैक्टिकल स्वरूप अनुभव कीजिए, और भारत फिर से बन रहा है वो हम आंखों से देख रहे हैं, आप भी देखते जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है खुद का परिवर्तन यही श्रेष्ठ है, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो पांच बातें हैं। पहली है, आप स्वयं को बार बार एक श्रेष्ठ आत्मा फील करो कि मैं हूं ही श्रेष्ठ आत्मा, क्योंकि आत्मा में परिवर्तन होता है, वो तीन दिन में आपने सुना भी होगा। और आप तो इसमें कुछ वैज्ञानिक भी है, अधिकारी भी है, आप लोग जल्दी इसको पकड़ लेंगे, जल्दी इसका अनुभव भी करेंगे। फिर दूसरा है, आप मन के अंदर जस्ट स्मृति लाओ कि मैं भगवान की संतान हूं, इस संसार का सर्वश्रेष्ठ रचयिता, देवाधिदेव, महादेव, शिव, परमात्मा, उसकी मैं संतान, वो परमात्मा, परमात्मा जो जन्म मृत्यु में नहीं आता है, मैं आती हूं, उसकी मैं संतान, वो मेरा पिता। भगवान नमस्कार तो करते हैं, उपवास भी करते हैं, आप में से भी सभी करते होंगे, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति भगवान को मानने वाली संस्कृति है। लेकिन आप जोड़ो उससे, पिता और मैं उसका बच्चा, तो उसके सारे गुण उसको अनुभव आप ही आप करते जाएंगे। तो दूसरा है कि मैं परमात्मा की संतान हूं। तीसरा है, अगर हम भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान हमारा ध्यान रखता है। क्या ध्यान रखता है? वो कुछ हमारे से निगेटिव होने नहीं देता है। संसार तो बहुत सारा कुछ हो रहा है, हम उसी में रहते हैं, लेकिन वो हमारे से कुछ निगेटिव होने नहीं देता है। इसलिए उसका ध्यान हम जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन का अर्थ है ऑल अटेंशन विदाउट टेंशन। ऐसा सुंदर योगाभ्यास जरूर कीजिए। चौथी बात याद रखना, देना ही लेना है, देना ही लेना है। आप शांति दो, शांति मिलेगी, आनंद दो, आनंद मिलेगा, प्यार दो, प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट मिलेगा। देते चलो। भगवान कहता है तुम्हारे पूर्वज देवता, तुम भी देवता। देवता माना देने वाले। और पांचवी बात है जो बहुत जरूरी है कि अगर हम समय को महत्व देते हैं तो समय हमें भी महत्व देता है। आप ऐसा नहीं कहना, हाँ बहन जी मैं सोचूंगा, आफ्टर रिटायरमेंट करूंगा, ये होने के बाद करूंगा। इंसान सहज रीति बोल देता है, लेकिन नहीं, समय भी बहुत ही सुंदर वैल्यूएबल चल रहा है। कहते हैं थोड़ा थोड़ा करते चलो, फिर आगे चल करके बढ़ता जाएगा। समय की कदर करने वाला ही जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है। तो इस समय को भी हमें समझना है। तो इस प्रकार आपको वापस हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ के सुंदर वातावरण में आपने बहुत सुंदर अनुभव किया है, ऐसा ही इसका छोटा रूप सेवा केंद्र होता है, पाठशाला होती है, हमारे 24 आवर पीस ऑफ माइंड चैनल है, लेकिन किसी ना किसी रूप से आप इस विद्यालय से जुड़े रहो, क्योंकि ये समय की पुकार है, समय की डिमांड है। और योगिक खेती का अगर आप पूछेंगे तो मैंने आंखों से देखा है, किसानों के पास जाकर के सब कुछ सुना है, उनसे देखा है, प्रैक्टिकल उनका जीवन भी देखा है कि कैसे उनके संस्कार भी श्रेष्ठ हो जाते हैं, परिवार आदर्श बन जाते हैं, उनका इनकम भी बढ़ता है, शरीर भी निरोगी रहता है, और फसल तो इतनी सुंदर आती है, पौष्टिक होती है, हम बहुत खाते हैं वो, क्योंकि हमारे पास किसान ला करके देते हैं, पौष्टिक भी होती है, सात्विक भी होती है, टिकाऊ होती है, जल्दी खराब नहीं होती है, वो सब्जी हो या बनाई हुई उसकी चीज भी हो। और धरणी तो ऐसे बन जाती है, एक लास्ट अनुभव सुना करके मैं पूरा करूंगी। हमारे सुनीता बहन पांडे जिनको आपने सुना है साइंटिस्ट में, वो अपने 12-13 ऑल इंडिया के साइंटिस्ट को लेकर के कोल्हापुर के अंदर एक कनेरी मठ है जहां पर बहुत ही खेती का चलता है, वहां के महाराज है वो, 100 एकड़ में बहुत कुछ करते हैं, उनको खेती के प्रति प्यार भी है। तो उन्होंने उनके पास एक मीटिंग रखी थी, 12-13 साइंटिस्ट आए थे, तो सुनीता बहन ने सबको आग्रह करके बाला साहब भाई की खेती दिखाई जो शाश्वत योगिक खेती के रूप से चलती है। उन्होंने खेती को देखा, मैं उनके साथ ही थी, सारे साइंटिस्ट थे, सब इतनी खेती को देख करके खुश खुश, वाह क्या खेती है, क्या खेती है, क्या खेती है। और सबसे बड़ी बात मैंने आंखों से देखी कि वो लोग ऐसे मिट्टी वहां के उठाते थे हाथ में, सुंदर मिट्टी, इसको कहते जीवंत मिट्टी, ये उनके शब्द है, इनको कहते जीवंत मिट्टी। तो इस प्रकार मिट्टी के लिए भी जिसने हमको जन्म दिया वो मिट्टी भी सुधर जाती है, बहुत अच्छी बन जाती है, मिट्टी के लिए भी फायदा है। जल पांचों तत्वों का उसमें रिगार्ड है। पांच तत्व क्या चीज है हम जानते ही नहीं थे, हमको भगवान ने सिखाया। ये प्रकृति, बच्चे कितनी सुंदर प्रकृति है ये, जिससे तुम्हारा ये शरीर बनता है, तो इसको भी वाइब्रेशन दो। तो वाइब्रेशन के द्वारा जो ये खेती की जा रही है, बहुत सारे किसान कर रहे हैं, हर स्टेट में कर रहे हैं, और उनको पर्सनल लेवल पर, पारिवारिक लेवल पर, सामाजिक लेवल पर, हमारा नांदेड़ साइड में एक भाई है, उसको तो इतने अवार्ड गवर्नमेंट के तरफ से मिले हुए हैं, और उसका जो बना हुआ प्रोडक्शन है, हमारे महेंद्र भाई भी बैठे हुए हैं, वो बाहर भी जाता है। तो इस प्रकार किसान, अगर किसान को शान में लाना हो और उसको हर कुरीति से, कुरसम से छुड़ाना हो, तो ये शाश्वत योगिक खेती किसान को भी श्रेष्ठ करेगी, और अन्नदाता जब श्रेष्ठ बन जाता है तो ये सारी सृष्टि भी श्रेष्ठ बन जाती है। तो वापस एक बार आप सभी को यही विनंती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हर रोज मेडिटेशन जरूर कीजिए, कैसा भी टाइम निकाल करके। और मेडिटेशन के जो ढेर सारे फायदे हैं, उन सब का लाभ उठाइए। ओम शांति।
बहुत सुंदर आदरणीय दीदी जी, आपने हमें इस भारत की पूर्व संस्कृति की याद दिलाई कि इसी भारत का जो पूर्व स्वरूप था वो था देवी देवताओं का, जिसको आप हॉल के पीछे की तरफ देखोगे तो भी पता चलेगा कि इसी भारत पर ही नहीं लेकिन सारे विश्व पर जिन्होंने राज किया, विश्व महाराजन श्री नारायण और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी, जिसको सुनकर मुझे बचपन का एक मराठी गीत याद आया। मराठी वाले होंगे तो जानते होंगे, हे राष्ट्र देवतांचे, हे राष्ट्र प्रेषितांचे, हा चंद्र सूर्य नांदो, बोलिए स्वातंत्र्य भारताचे। यही भारत देश देवभूमि था, न केवल कहलाता था, तभी तो कहलाता है। और उसी दैवी संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का प्रयास 88 सालों से ब्रह्मा कुमारी के इस विद्यालय के द्वारा ऑल ओवर वर्ल्ड किया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्र में भी उनकी सेवाएं चल रही है, लेकिन बेसिक जो है वो है ये जो हमारा किसानों का कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग, जो कि अभी भी कार्यरत है। और देवताएं भी तो भोजन जरूर करेंगे, है ना, उनको भी हम अभी भी भोग स्वीकार कराते हैं। तो देवताओं को अगर शुद्ध सात्विक भोजन खिलाना है तो उसके लिए इस प्रकृति को भी हमें सुधारना, सात्विक बनाना जरूरी है, जो काम केवल और केवल किसान लोग ही कर सकते हैं। तो मैं सोच रही थी कि ये जो ब्रह्मा कुमारीज में बहने सेवारत हैं, जिन्होंने कभी प्रैक्टिकल खेती में जाकर के खेती तो नहीं की है, लेकिन किसानों के अंग संग उनको बुला करके उनकी क्या मुसीबतें हैं उनको सुन करके, उन्हीं मुसीबतों से फ्री होने के लिए भगवान के क्या डायरेक्शंस हैं, क्या विजन है, क्या दिशाएं हैं, वो दे रही है। और इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से सारे भारतवर्ष के किसानों तक पहुंचने के लिए हमारी जो ये कार्यरत प्रभाग है, विंग है, उसके कुशल प्रशासक निर्मल, सरल, सकारात्मक और सशक्त हस्ती विभूति आत्मा जो भगवान का सेवाधारी सच्चा बच्चा आदरणीय हमारे विंग के अध्यक्षा राजयोगिनी सरला दीदी जी, जिनको आप 3 दिन से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनका प्रशासन सच्ची में बहुत कुशल है, जिनके मन में, मस्तिष्क में हर एक इंसान को, उसमें भी खास किसानों को कैसे ऊंचा उठाया जाए, उनके जीवन में भगवत शक्तियों को कैसे भर दिया जाए, उनके जीवन को जो सांसारिक झंझटें होती हैं, खेती के बीच जो प्रकृति की मुसीबतें आती हैं, उनसे भी वो कैसे बचे रहे, उसके लिए किसानों को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम हमेशा बनाते रहते हैं। ऐसे आदरणीय सरला दीदी जी, जो कि गुजरात, भावनगर और मेहसाना, जिसके क्षेत्रीय निदेशिका के रूप में कार्यरत है, आप हमें अपने आशीर्वचन देकर हमें बहुत ऊंचा उठने की प्रेरणा देंगे। आदरणीय सरला दीदी जी, ओम शांति। नव विश्व रचयिता परमपिता परमात्मा की अति प्रिय संतान, प्रिय आत्मन, भाइयों तथा बहनों, 3 दिन से आप सब जो ये विषय दिया गया है, सर्वांगीण विकास का आधार शाश्वत योगिक खेती, इसके हरेक पहलू पर खूब अच्छे अच्छे वक्ताओं के द्वारा अनुभव युक्त विचार आप सबने सुने, साथ ही साथ जीवन जीने की एक कला, जो शाश्वत मूल्य, उन मूल्यों की पहचान भी आपको प्राप्त हुई। और आज हम इस रिट्रीट के समापन सत्र पर पहुंचे हैं, जिसका विषय, जो आपने पूर्व वक्ताओं के द्वारा बहुत ही अच्छी रीति से उसका स्पष्टीकरण सुना, इस विषय को स्पष्ट करने के लिए मंच पर उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षा राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुनंदा बहन, जो एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व, एक अलौकिक ऊर्जा की धनी है, साथ ही साथ इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिनको सम्मानित किया गया, ऐसे हमारे कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष कर्मठ योगी ब्रह्मा कुमार राजू भाई, साथ ही साथ अन्य सभी वक्तागण और आप सभी विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए परमात्मा पिता के अति प्रिय आत्मन, मैं जब विषय के ऊपर सोच रही थी तो सभी वक्ताओं ने दोनों पहलुओं को स्पष्ट किया है। एक पहलू था कृषक और ग्रामीणों के
स्वर्णिम सशक्त और आत्मनिर्भरता की बात। दूसरे पहलू को आध्यात्मिकता की रीति से स्पष्ट किया गया। वास्तव में जब हम स्वर्णिम भारत की बात करते हैं, बहुत सुंदर शब्दों में सुनंदा बहन ने उसको स्पष्ट किया है, तो ये देश, इस शब्द को जब मैं सोच रही थी तो सारा एक सृष्टि चक्र जैसे बुद्धि के सामने मानस पटल पर घूम रहा था। स्वर्णिम आदिकाल था, देवभूमि ये भारत था, और जब ये स्वर्णिम भारत देवभूमि था तब ये सशक्त था और आत्मनिर्भर था। उस स्वर्णिम दुनिया की स्थापना करने वाला कौन? तो हम सब आज दिन तक ये सुनते आए हैं, हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग का रचयिता, एक ही परमात्मा है। क्योंकि जो देवभूमि भारत था, देव मानव बना, मानव दानव बना। आज उन दानवी वृत्तियों को परिवर्तन करना किसी भी व्यक्ति का काम नहीं है, उसके लिए वो दैवी एक परमात्मा शक्ति जो इन आसुरी वृत्तियों का नाश करने के लिए हमें सत्य ज्ञान देती है, और उस सत्य ज्ञान के आधार से सद्विवेक जागृत होता है, सद्विवेक से सत कर्म करते हैं, और कर्म वो बीज है जो हमें देवत्व का फल प्राप्त कराता है। और खुशी की बात है कि ये तीन दिन से आप सबने जो विषय को स्पष्ट किया है, तो मुझे ये भी एक विचार चल रहा था कि कोई हमारे कृषि अधिकारी हैं, कोई हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, कोई हमारे कृषक हैं, ये आपका प्रोफेशन है, लेकिन आप एक सामाजिक प्राणी हैं। जिस समय पर हमारे कृषि अधिकारी अपने परिवारजनों के साथ बैठे होंगे, अपने बच्चों के साथ बात कर रहे होंगे, तब वो उनको सरकारी योजनाएं नहीं सुनाएंगे, अपने संबंधियों के साथ बातचीत कर रहे होंगे तो कृषि की बातचीत नहीं करेंगे, वहां उनका अपना एक दूसरा रोल है। तो ये जीवन निर्वाह के लिए एक प्रोफेशन है। तो इस कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग का ये लक्ष्य है, और समापन का जो हेडिंग आप पढ़ रहे हैं, आज कृषक और ग्रामीण शब्द नहीं है, आज शब्द है स्वर्णिम सशक्त आत्मनिर्भर भारत। भारत अर्थात सर्वात्माएं, चाहे ग्रामीण हैं, चाहे कृषक हैं, अथवा अन्य सभी हैं। तो आप यहां से जो एक आध्यात्मिक संस्कार लेकर के जा रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में तो क्रांति लानी ही है, वो हम आपका एक परम कर्तव्य है, लेकिन साथ ही साथ जो एक ईश्वरीय ज्ञान की अलौकिक पालना आपने ली है, और उस पालना के द्वारा हर एक जो भी सुबह से शाम तक ऑफिस में मिलने के लिए आते हैं, उनसे बातचीत करते, हर एक अपने जीवन के अंदर एक अलौकिक आनंद, एक ऊर्जा, एक शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। आप सब इसी चीज को महसूस कर रहे हैं कि आपने यहां कुछ पाया है? जिन्होंने पाया है हाथ खड़ा करेंगे। अब ये जो ऊर्जा आपको मिली है, इस ऊर्जा का सुनंदा बहन ने बहुत अच्छी रीति से विस्तार से उसका वर्णन कर दिया है कि आप पांच बातों के रूप में रोज उनका अभ्यास करेंगे। इस ऊर्जा को हमें बढ़ाना है, और बढ़ाने के लिए नियमित राजयोग का अभ्यास करना है। ये अभ्यास, चाहे आप किसी भी स्थान पर हैं, वहां रहते हुए आप कर सकते हैं, जिसको परमात्मा पिता ने कहा है कि आप कर्मयोगी हो, और जब कर्मयोगी बनकर के आप कर्म करेंगे तो आपके कर्मों में कुशलता आएगी। इसीलिए कहा जाता है योगः कर्मसु कौशलम्। तो आप अपने कर्म में कुशलता प्राप्त करते हुए जो परमात्मा पिता इस समय स्वर्णिम भारत की स्थापना का कर्तव्य कर रहे हैं, हमें सशक्त बना रहे हैं, हमारी आत्मा की जो सुषुप्त शक्तियां हैं उन शक्तियों को जागृत कर मानव आज का किस बात में कमजोर है, धनवान है, रूपवान है, संपत्तिवान है, सब कुछ है, लेकिन जो वास्तविकता है गुणवान चरित्रवान, उन वास्तविकताओं से दूर होने के कारण अपने आप को अशक्त महसूस कर रहा है। तब परमात्मा पिता सबसे पहले हमें ये दिव्य संदेश देते हैं कि तुम अपने आप को पहचानो, और जब हम स्वयं को पहचानते हैं तो हमारे जो भी गुण और शक्तियां हैं वो शक्तियां इमर्ज होती हैं, और आत्मा अपनी जो कमजोरियां हैं, आज का मानव कर्म इंद्रियों का गुलाम हो गया है। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जो ये चाहता होगा कि मैं गलत कर्म करूं या मैं किसी को दुख दूं, परंतु परवश होने के कारण, इन इंद्रियों का गुलाम होने के कारण वो आज अशक्त है, इस प्रकार के कर्म कर रहा है जो दुष्कर्मों की लिस्ट में जा रहा है, और उसके परिणाम स्वरूप वो दुखी है। तो परमात्मा पिता स्वर्ग का रचयिता आत्मा का दिव्य ज्ञान दे करके आत्मा की शक्तियों को जागृत करने के लिए राजयोग का अभ्यास कराते हैं, और हम आत्माएं सशक्त बनती हैं, और सशक्त आत्मा ही आत्मनिर्भर है, वो दैवी संस्कारों से दैवी संसार और वो संस्कृति स्थापन हो रही है। उस दुनिया के लिए कहा जाता है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य सपनेहु नहीं व्यापा। वहां पर सब प्रकार का सुख था लेकिन स्वप्न मात्र भी दुख नहीं था, क्योंकि मनुष्य कर्मेंद्रियों का गुलाम नहीं था। आज कर्मेंद्रियों का गुलाम होने के कारण आत्मनिर्भर नहीं है, सोचता है अच्छे मार्ग पर चलूं, मित्र मिला चलो पिक्चर में चलते हैं, रास्ता बदल गया, वश हो गया। तो ये सत्र हमें ये एक दिव्य संदेश दे रहा है कि ईश्वर पिता जो सत्युगी दैवी सृष्टि का स्वर्णिम सृष्टि का की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, तो हम अपने आप को पहचान करके अपनी दिव्य शक्तियों को उजागर कर आत्मनिर्भर बन उस सृष्टि की अधिकारी बने। मैं प्रभाग की तरफ से हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि अधिकारी सभी भाई बहनों का दिल से सम्मान करती हूं, और सम्मान का कारण है इतने लंबे समय से मैंने खुद उनकी ईश्वरीय सेवाओं को देखा है। आप सभी कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की जो ये प्राकृतिक खेती की शाश्वत योगी खेती की योजना है, उस योजना को आपने बहुत विस्तार पूर्वक समझा है कि ये वही हमारी प्राकृतिक कृषि है जो प्राचीन कृषि थी, और उसको समझ करके कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप सारे उत्तर प्रदेश प्रदेश के लिए सहयोगी रहे, जैसा कि भाई ने सुनाया तोमर भाई ने कि 75 जनपद में इसके जो अभियान निकले वहां पर आपने पूर्ण सहयोग दिया, और उन्हीं भावनाओं के परिणाम स्वरूप आज आपने सभी अधिकारियों ने, भले कुछ उपस्थित न भी हो लेकिन आप सबके तरफ से प्रभाग को सम्मानित किया गया, उससे ये लगता है कि आपने प्रभाग की प्रवृत्तियों का कदर किया है, उसको समझा है। मैं प्रभाग की तरफ से आप सभी का खूब 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 हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन करती हूँ। साथ ही साथ अधिकार से ये भी एक आशा रखती हूँ कि आप अपने जैसे अन्य हमारे स्टेट के जो अधिकारी गण हैं, उन्हों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे और उनको भी प्रेरित कर इस सत्य मार्ग में आने की प्रेरणा देंगे। और खुद भी, क्योंकि इसके पहले भी जो हमारे कार्यक्रम हुए हैं उसमें आपकी तरफ से काफी अधिकारी आते रहे हैं, आप अति व्यस्त हैं, आपकी दिनचर्या से भी हम परिचित हैं, लेकिन फिर भी 3 दिन का समय निकालना और इस प्रकार से सहयोग देना, तो हम उसके लिए आपको पुनः पुनः धन्यवाद देते हैं। एक चीज और जो मैं महसूस कर रही थी कि 3 दिन तो हम आप साथ में रहे, कल आप छोड़ करके चले जाएंगे, कल आप चले जाएंगे, तब अंतर चेतना ने कहा ये जाना नहीं है, ये जाना है, बोलिए, आने के लिए। आप अपने स्थान पर जाकर के जो कृषक और ग्रामीण हैं उन्हों को जागृत करेंगे, आप अपने परिवार के सदस्यों को, अपने संबंधियों को जो आपने यहां से प्राप्त किया है ये ज्ञान का प्रसाद बांट करके उनके जीवन में भी जो आपने प्राप्ति की है ज्ञान की शक्तियों की, उस प्राप्ति को, उस ज्ञान के प्रसाद को आप बांटेंगे। क्योंकि यहां 3 दिन ऐसे महसूस होता था कि आप सभी परमात्मा के बच्चे, आपने बचपन को महसूस किया, महसूस किया, बच्चे के ऊपर कोई जवाबदारी नहीं है, ना खाना बनाने की, ना खाना खाने की, ना बाजार से कुछ लाने की, ना ऑफिस या बिजनेस में जाने की, बच्चे को क्या होता है, पढ़ाई पढ़नी है। तो आप सब भी इस ईश्वरीय बचपन में आपको भी क्या काम था, सुबह उठना है और शिविर का अध्ययन करना है, मेडिटेशन करना है, उसके बाद क्या करना है, ब्रेकफास्ट करके फिर से सत्र में आना है, पढ़ना है, सुनना है। तो एक अलौकिक ईश्वरीय बचपन का आपने अनुभव किया, ये राइट है, राइट है। तो अब आप सब कौन हैं, परमात्मा के बच्चे, हमारे कौन हैं, भाई हैं। तो जब उस परमात्मा के बच्चे हैं, हम एक ही परिवार के हैं, तो आप भाई बहने भी पुनः राजयोग का अभ्यास कर ऐसा अपने आप को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएंगे जो उस स्वर्णिम दुनिया जिसकी परमात्मा पिता स्थापना कर रहे हैं उसमें ऊंच पद, देव पद की प्राप्ति करें। ऐसी मेरी अंतर्मन की आप सर्व के लिए शुभ भावना और मंगल कामना है। पुनः पुनः आप इस ईश्वरीय परिवार में, अपने घर में पधारेंगे, उसके पूर्व जिस स्थान पर जाएंगे वो भी परमात्मा का ही स्थापन किया हुआ घर है। ये बेहद का बड़ा घर है, लेकिन आप जहां से भी आए हैं, लखनऊ से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, महाराष्ट्र के किसी सेवा केंद्र से आए हैं, वहां पर भी परमात्मा के घर हैं, तो आप अभी अवश्य अपने घर में सेवा केंद्र पर जाएंगे और अपने आप को इस ईश्वरीय पालना और ईश्वरीय पढ़ाई से सशक्त बना करके इस समृद्ध भारत, सशक्त भारत के निर्माण में सहयोगी बनेंगे। ऐसी अंतर्मन की शुभ भावनाओं के साथ आप सभी का, हर सत्र में भाग लेने वालों का खूब 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 दिल से शुक्रिया और आभार व्यक्त करती हूँ। ओम शांति। दिल से
आपका भी शुक्रिया दीदी जी, आपने हमें अपने वक्तव्य से अंतर्मुखी बनाया, यूं कहें हमारा तीसरा नेत्र ही खोल दिया है। जो हम सोचते आ रहे हैं, हर साल मनाते भी आ रहे हैं कि हमारे भारत का स्वतंत्रता दिन बड़े प्यार से दिल से गाते खाते पीते आए हैं, लेकिन आपने एक सच्ची बात हमें रियलाइज कराई कि हम भले ही स्वतंत्र भारतवासी कहलाते हैं, लेकिन फिर भी हम इन पांच विकारों के गुलाम ही रहे हुए हैं। तो इस गुलामी से छूटने के लिए भगवान के साथ हमें सच्चा और पक्का पिता और पुत्र का रिश्ता बनाकर इन विकारों से छुट्टी ले सकते हैं, अर्थात मेडिटेशन के आधार से हम अपने जीवन का स्तर भी बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। साथ ही साथ दीदी जी, आपने एक याद दिलाई कि आप 3 दिन यहाँ पर बच्चे बनकर रहे हैं और सभी ने उसको अपना अनुमोदन भी दिया तालियां बजाकर। तो मुझे वो गीत भगवान का कहा हुआ याद आया कि बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, लंबे है जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते। प्यारे भाइयों और बहनों, ये स्वर्ग स्थापना, देवताओं की संस्कृति को साकार करना, उस मंजिल तक पहुंचने में अभी कुछ आपके भी सहयोग की भगवान को आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि ये सिद्धांत है किसी भी कार्य में जो सहकार देता है, सहयोग देता है, वो उसका अधिकारी भी अवश्य बनता है। तो आप भी भगवान के उस वर्षे के अधिकारी आत्माएं हो तो निश्चित ही आप वो वर्षा लेकर के ही यहाँ से जाएंगे और वहां जाकर अनेकों को जगाएंगे भी जरूर। अब इसके बाद तुरंत आप भोजन पर जाने वाले हैं और उसके बाद एक प्रोग्राम है कृषकों के साथ विशेष संवाद। अच्छा, कैंसिल है, कोई बात नहीं, लेकिन कल सवेरे अपना राजयोग का शिविर तो शुरू होगा 6:30 से 8 बजे का, जिसमें आप अवश्य उपस्थित रहेंगे। अब इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार शशिकांत भाई जी, जो कि इस ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय कोऑर्डिनेटर है। आप लगभग 40 सालों से इस राजयोग का अभ्यास करके अपने जीवन को भी समर्पित रूप से लाखों आत्माओं की सेवा में सफल कर रहे हैं। प्रभाग की ओर से जहां जहां जो जो सेवाएं होती है, आप उसमें जरूर हिस्सा लेकर के अनेक ग्रामस्थ और कृषकों को भी अपने अनुभव के आधार से लाभान्वित कराते आ रहे हैं। आदरणीय शशिकांत भाई जी, आप आएंगे सभी का आभार व्यक्त करने।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के समापन सत्र की अध्यक्षा हमारी प्रेरणा मूर्ति आदरणीय सुनंदा दीदी जी और इस प्रभाग को जिन्होंने सदा ही आगे बढ़ाने के लिए अपने कुशल नेतृत्व का संचालन करके हम सभी भाई बहनों को आगे बढ़ाया है, ऐसी हमारी आदरणीय सरला दीदी जी मंच पर विराजमान आज के इस समारंभ के अतिथि पटले जी, हमारे सहयोगी आज के प्रमुख वक्ता राजेंद्र भाई करण भाई जी, हमारे प्रेरणा मूर्ति राजू भाई जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सम्माननीय अधिकारी तोमर साहब और इस कार्यक्रम की कुशल मंच संचालन करने वाली हमारी आदरणीय शोभा दीदी तथा सभा में उपस्थित आप सभी मेरे अति स्नेही और प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हूं। मेरे एक छोटी सी मैं कहानी आपको बताता हूं एक मिनट के अंदर। आप सभी यहां आए, तीन दिन अपने बहुत अच्छी तरह से इस हमारे कार्यक्रम को सुना है। आप कल परसों आप अपने स्थानों पर प्रस्थान करेंगे, लेकिन मैं छोटी कहानी के द्वारा बताना चाहता हूं अपने यहां जो सुना है उसके बारे में। एक अधिकारी थे, छुट्टी का दिन था, घर में सवेरे के समय वर्तमान पत्र पढ़ रहे थे। उनकी मिसेस ने आकर के उनके सामने एक दूध का ग्लास रखा और साइड में चीनी की कटोरी रखी। साहब तो वर्तमान पत्र पढ़ने में मस्त थे, उनका ध्यान नहीं था, उनका छोटा 5 साल का बच्चा खेलते खेलते उनके पास आया। उसने देखा दूध का ग्लास है, दूध के ग्लास के बाजू में चीनी की कटोरी है। उसने उस चीनी की कटोरी में जो चम्मच था उस चम्मच से वो चीनी लेकर के एक एक चम्मच उस ग्लास में डालता रहा। तब तक सांप का ध्यान गया। सांप ने कहा, अरे अरे क्या कर रहा है, रुको रुको। बच्चे ने कहा, पप्पा मैंने केवल चीनी डाली है लेकिन घोलने का काम आपको करना है। क्या कहा बच्चे ने, चीनी केवल मैंने डाली है लेकिन चीनी का दूध में घोलने का काम आपको करना है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिता परमात्मा ने हमारी बहनों के द्वारा भाइयों को के द्वारा एक ज्ञान रूपी दूध आपको यहां पिलाया है। अभी चीनी भी आपको मिली है लेकिन जब तक इस चीनी को आप अपने जीवन के अंदर नहीं घोलेंगे तो आपका जीवन परिवर्तन नहीं हो सकता, श्रेष्ठ नहीं बन सकता। तो इसलिए यह जो आपको प्रभु प्रसाद मिला है उस प्रभु प्रसाद को अच्छी तरह से आपके मन मस्तिष्क में धारण करके और उनका भी जीवन श्रेष्ठ बनाने का कार्य आप यहां से जाके करेंगे, ये शुभ आशा रखता हूं। आज की इस सभा में उपस्थित हमारी आदरणीय सरला दीदी जी इतनी व्यस्त होते हुए भी अभी बहनों ने बताया दीदी के कितने सेवा केंद्र है, दीदी सब जोन इंचार्ज है और हमारी प्रभाग की अध्यक्ष है। आपकी दीदी की अगर हमारे दीदी की अगर आपको दिनचर्या सुनाने जाएंगे तो आपको बोलेंगे एक महिला होते हुए भी इतना कार्य कर सकती है। लेकिन हमारी दीदी की दिनचर्या सवेरे 3:30 बजे आप दीदी को हम देखते हैं संदल पर आकर के मेडिटेशन करने के लिए बैठती है और रात 11 बजे तक दीदी का निरंतर कार्य चलता रहता है। आज सवेरे देखेंगे दीदी मुरली सुना रही है, मुरली के बाद आप देखेंगे नाश्ता करके दीदी कहां पहुंच गई, अलग के स्थान पर, दूसरे स्थान पर, रात का भोजन तीसरे स्थान पर होता है दीदी का। इतना व्यस्त जीवन होते हुए भी दीदी आपने हमारे लिए समय निकाला, अपने आशीर्वचन के द्वारा हम सभी को अपनी प्रेरणाएं दी, इसलिए आपका तहे दिल से आभार है। ऐसे हमारी सुनंदा दीदी का भी, जैसे सरला दीदी का है ऐसे ही हमारी सुनंदा दीदी की भी दिनचर्या। तो दीदी जी आप भी बहुत व्यस्त होते हुए भी आप यहां आए, अपने आशीर्वचन कहे अपनी प्रेरणा ही कहें हम सभी के सामने रखी, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय वरिष्ठ भ्राता, हमारे प्रेरणा मूर्ति राजू भाई, उनके अंग संग रह करके 37 साल हुए मुझे। भाई साहब का भी बहुत व्यस्त जीवन है, ऐसे व्यस्त कारोबार में होते हुए भी अपने उन्होंने हम सभी के लिए समय निकाला, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। हमारे जितेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने भी अपने वक्तव्य के द्वारा हम सभी को प्रेरणाएं दी ही, उनका भी धन्यवाद। पटले जी, आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि पुनः हमारी वो संस्कृति इस भारत की स्थापन करनी है जो हमारी ओरिजिनल संस्कृति थी, तो आपका भी धन्यवाद। हमारे करण भाई, हमारे राजेंद्र भाई जी तो हमारे प्रेरणा मूर्ति है। उनके साथ कई स्थानों पर जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है, तो उनसे बहुत प्रेरणा मुझे मिलती रहती है। ऐसे मेरे प्रेरणा मूर्ति राजेंद्र भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। करण भाई, आपका भी धन्यवाद। और शोभा दीदी, जो हमारे सुनंदा दीदी के अंग संग्रह करके ईश्वरीय सेवा में तत्पर रहती है और आज हमारे इस मंच संचालन में उपस्थित रहकर उन्होंने भी अपनी वाणी के द्वारा हम सभी को प्रेरणा दी है, तो ऐसे हमारी शोभा दीदी, आपका भी धन्यवाद। और आप नहीं होते तो मैं यहाँ कैसा खड़ा रहता, आप नहीं आते तो मैं यहाँ कैसा रहता, किसका आभार मानता। तो भारत के कोने कोने से आए हुए आप सभी मेरे अति स्नेही, अति प्यारे, क्या कहूं, मेरे भाई कहूं, मेरे सहयोगी साथी कहूं, या ईश्वरीय कार्य में आप मददगार मेरे राइट हैंड भाई कहूं, ऐसे हमारे अति स्नेही प्यारे आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इस मंच को हर दिन सजाने वाली, इस मंच की सेवा को अच्छी तरह से सुचारू रूप से हैंडल करने वाली हमारी तृप्ति दीदी और उनके सभी साथियों का भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे ज्ञान सरोवर निवासी भाई बहने जिन्होंने अपना सहयोग हमारी इस प्रभाग की सेवा के लिए दिया है, चाहे हमारे किचन वाले हैं, डाइनिंग वाले हैं, हमारे इस हार्मनी हॉल में समय समय पर आकर के अपनी सेवाएं देने वाले हमारे वीडियो डिपार्टमेंट वाले, बिजली वाले भाई हमारे है, आप सभी का, और हमारे विशेष रूप से हमारे आवास निवास के भाई साहब और बहने, मैं आपसे सभी को पूछना चाहता हूं, आपको भी तकलीफ हो गई, कोई तकलीफ हो गई तो बोलना, भाई साहब हमें तकलीफ हो गई है। सभी को अच्छा स्थान मिला, अच्छा भोजन मिलता है, मिला तो चलो, तो ऐसे हमारे सभी को सुविधा देने वाले हमारे सभी भाई बहनों का, हमारी विशेष हमारी निर्मला दीदी जो इस ज्ञान सौर का संचालन करती है, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और इस कार्यक्रम को जिन्होंने हमें प्रेरणा दी है, जिनकी प्रेरणा से इस कार्यक्रम का सुंदर समापन हो रहा है, वो पिता परमात्मा, शिव पिता परमात्मा, जो हम सभी का पिता है, जो हमें शक्ति देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, उस शिव पिता परमात्मा और उनके साकार माध्यम हमारे आदरणीय प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर ये दोनों की प्रेरणा हमारे साथ न होती तो आज हम आपके बीच में नहीं, तो आप हमारे साथ में न होते, तो आप सभी का और सभी का धन्यवाद करते हुए मैं मेरी वाणी का विराम देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, ओम शांति।
इतना दिल के उमंग उत्साह के साथ हम सबका आभार व्यक्त करने वाले शशिकांत भाई जी, आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। आपकी वाणी से ही पता चला कि आप कितना दिल के भाव के साथ यहाँ सबका आभार व्यक्त कर रहे थे। अब इसके बाद आदरणीय सरला दीदी जी को मैं विनती करती हूँ कि हमारे अतिथि भ्राता पटले जी को ईश्वरीय सौगात देकर के सम्मानित करेंगे। और भाई साहब को भी मैं जरूर ये विनती करती हूँ कि आप यहाँ से जाने के बाद वहाँ भंडारा गोंदिया जो भी एरिया है नागपुर सरद, तो उधर बहुत अच्छी तरह से किसानों को एकत्रित करके उनको इससे प्रेरणा दिलाएंगे और लाभान्वित भी कराएंगे। अब इसके बाद आप सबसे एक बात पूछनी है, क्योंकि बड़े तो बड़े ही होते हैं, बड़ों की दिल भी बहुत बड़ी होती है, जो सब कुछ देना है जो ईश्वर के घर में आए हुए हैं। अभी 2 मिनट भगवान का हम शुक्रिया अदा करते हैं।